ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाशासन के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित है अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम में अब विशेष कार्यक्रम है छांदोग्य उपनिषद ज्ञान यज्ञ। कल तक नवम खंड हो गया था, प्रथम अध्याय में दसम खंड चलेगा। उद्गीत का उपासना प्रारंभ हुआ। ओम इत्येतद् अक्षरम् उद्गीतम् उपासितम्। उद्गीत है साम का अवयव। साम में पांच भाग है, हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार निधनम् आगे आएगा। और सात भाग भी है, एक आदि और एक उपद्रव, दो मिल जाएगा तो सात भी हो जाएगा। सात भाग वाले साम उपासना के आएगा, पंचभक्ति का साम उपासना भी आएगा। अभी उद्गीत उपासने के प्रसंग में उसके उद्गीत के पूर्व में है प्रस्ताव और पश्चात प्रतिहार। तो प्रस्ताव का उपासना प्रतिहार का उपासना आरंभ करने के लिए विधान करने के लिए कहते हैं। उद्गीत उपासना चल रहा था, उसके प्रसंग से उद्गीत के समीपवर्ती भाग का नाम प्रस्ताव और प्रतिहार, ये दोनों का उपासना विधान करना है। ये विधान करने के लिए के आख्यायिका रूप से विधान करते हैं। आख्यायिका के द्वारा अर्थ सुगम से बोध हो जाए, इस अभिप्राय से श्रुति आख्यायिका द्वारा कहती है। मटची हतेषु कुरुस्वाटिक्या सह जाय यो शक्तिर् हचाक्रायन इभ्य ग्रामे प्रद्राणक उवास। मटची हतेषु कुरुषु, मटची वर्षा में वज्रपात होता है और कुछ कीड़े होते हैं कभी कभी से आते हैं, इतने कड़े कहां से आ जाएंगे, बादल जैसे हो जाता है, अंधकार हो जाता है, वो आकर के धान गेहूं मूंग जो कुछ है सब पत्ते भी सब खा लेंगे। अथवा कभी अतिवृष्टि होकर के बन्या होकर के ऐसे शस्य नष्ट हो जाए, शस्य नष्ट होने पर दुर्भिक्ष हो जाता है, भोजन नहीं मिलता, बाजार में भी नहीं मिलता। तो मटची हतेश कुरुषु, कुरु देश में ऐसे जब हो गया, दुर्भिक्ष हो गया, एक चाक्रायण नाम के महर्षि थे, गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम में पत्नी के साथ मिलकर के कर्म करना होता है। कभी पत्नी का वियोग हो गया, समाप्त हो गई, तो या तो संन्यास ले ले या तो कर्म करने के लिए फिर द्वितीय विवाह करे। तो ऐसे प्राचीन परंपरा में विधवा विवाह नहीं करते, तो कन्या विवाह करते थे। तो चाक्रायणी की पत्नी छोटी थी, आटिक्या सह जाये, आटिक्या जाये या सह, जाया है पत्नी, उसका विशेषण है आटिकी, आटिक्या, आटिक ऐसा है, अभी छोटे है, स्त्री का जो चिन्ह स्तन आदि उसमें अभी स्पष्ट नहीं दिखता है, नहीं हुआ है, मतलब छोटी है, ऐसे आटिक्या जाया सह। उसस्ति चाक्रायण, चक्र के अपत्य होने से चाक्रायण नाम हुआ, उसस्ति ये नाम, वो जाकर के अपने देश छोड़ करके कहीं जो दुर्भिक्ष हो जाते हैं, हो जाता है, तो बहुत लोग अपने देश छोड़ करके बाहर चल जाते हैं जहां कुछ खाद्य मिले, तो वहां जाकर के एक इभ्य ग्राम है उवास, इभ्य ग्राम, इभ्य है ईश्वर को भी कहते, हस्त्यारोह हस्ती पालन करने वाले माहूत तो कहते, उसको कहते इभ्य, जो हाथी रखते हैं सेवा करते हैं, हाथी के द्वारा कुछ कार्य कराते हैं राजाओं का, हस्त्यारोह उसके ग्राम में जाकर के वो प्रद्राणक, प्रद्राणक है द्रा कुत्सित गतु, भोजन प्राप्त नहीं होने से बहुत जैसे इसे कि अंतिम समय हो जाएगा, भूखे हो रहते रहते अन्न लाभ नहीं, उनसे बिल्कुल दुर्बल हो गए, चलने फिरने मुश्किल है, तो वो जाकर के वहां पहुंच गई, अंत्यावस्था को प्राप्त, आगे भोजन नहीं मिलेगा, ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे। किसी के घर में जाकर के रहा पत्नी के साथ, ये पत्नी छोटी है इसलिए उसको छोड़कर कहीं कार्यक्रम इधर जाए तो कोई व्यभिचार की शंका नहीं, इसलिए इसे छोटी पत्नी के साथ किसी के घर में जाकर के रहा। और जब भूख लगती है अपने पास नहीं है तो मांगना ही पड़ता है, तो गया कहीं कुछ कोई किससे कुछ लेने के लिए। सह इभ्यम कुलमासान खादंतम विभिक्षे तम होवाच नेतोन्य विद्यन्ते यच्चम ये म इम उपनिहिता इति। सह इभ्यम भिक्षा के लिए इधर उधर जाते समय देखा कोई हस्ती पालन करने वाला हस्त्यारो कुछ खा रहा है तो उसके पास गए। वो कुलमा से उरद कुछ मास कुलमा से उड़द उरद का भिगा करके इसे कुछ करके खाता खा रहा है। दुर्भी की अवस्था में कुछ जो मिला कुछ गो को हाथी को खिलाना कुछ खिलाना उसे कुछ दाना भिगा था वो खा रहा था। खादंतम विभिक्षी खाते हुए भे से मांगा हमें उसको दे दो भोजन भूखा है। तम हो वाच उसको चाकरान महर्षि से हस्त्यारो ने कहा ने तो अन्य विद्यन्ते इतः अन्य न विद्यन्ते जो खा रहा है यही मेरे पास इतने ही है इससे भिन्न मेरे पास कुछ ही नहीं। ने तो अन्य विद्यन्ते यच्च ये इम उपनीता जो मैं बर्तन में रखकर खा रहा हूं रख दिया था थाली में खा रहा हूं ये मेरे पात्र में है झूठे इससे अन्य मेरे पास है ही नहीं उपनीता थी तो क्या मैं करूं मेरे पास है ही नहीं अभी मैं ही खा रहा हूं। एते सामे देही त्योवाच तान अस्मि प्रददो हंतानुपानितुचित वे मे पीतम से आदि त्योवाच। तो शक्ति चाकरान ने कहा एतेसा में दही इनमें से ही मुझे थोड़े दे दो अब कुछ ही नहीं जो खाते उसमें से थोड़े दे दो दही थी हो वाच तान अस्मय प्रदो जो खा रहा था उसको उनको दे दिया प्रदो तो भूखे है उसको ले करके एक थोड़े खाने लगे। जो देखे खाते है कोई खिलाता है उसके मन में भी दया है भूखा है तो देते ही खाने लगा तो बड़े खुश खाए कहा ये पास में पानी था हम तो अनुपानम लीजिए खाइए पानी भी लीजिए पानी पास में था जो पीने के लिए पी रहा था झूठे अनुपानम थी। ये कहते उच्चिष्टम वे में पीतम शादी थी हो वाच ये पानी में नहीं पीऊंगा पानी झूठे इसको पियूंगी तो झूठा पानी पीना हो जाएगा। उसको आश्चर्य लगा ये क्या कहते इतने बड़े ब्राह्मण विद्वान है हम तो मुरकल काम को मालूम नहीं ये झूठा मैं खा रहा था मैं देखा उसमें से दिया उसको तो खा रहे बड़े खुश होकर के बड़े भूखे खा रहे और पानी देने के बाद झूठा है ये क्या रहस्य न स्वीदेते प्युचिष्टा थी न वा अजीविष्यम इमान खादनित हो वाच कामो म उद पानमिति। क्या ये क्या झूठे नहीं जो उड़द खा रहे हो मैं खा रहा था झूठा है उसमें से दिया अपने देखा मैं खा रहा था क्या ये क्या झूठा नहीं क्या अर्थात झूठा आपको मालूम है मैं खा रहा था अपने मांगा मैं कहा मेरे पास नहीं यही है देखा है उसमें से लेकर खा रहे हो क्या ये झूठा नहीं है क्या। नवे अजीविष्यम इमान कादन ये झूठे होने पर भी इसको मैं नहीं खाता तो मर जाता है जीवित तो नहीं रहता। और जल काम इति होवाच कामों में उदपानम जल पीने के लिए तो मुझे मिल जाएगा जतेच प्राप्त है तो झूठा जल क्यों पियूंगा। तो इसमें से क्या बताते हैं इस अवस्था को यदि प्राप्त हुआ कोई और उसमें भगवान भाष्यकार कहते इसे मरणासन्न हो गया तो भी धर्म का ऐसे यदि कुछ उल्लंघन किया जैसे कर्म करता झूठा खाया तो पाप नहीं लगेगा। जब इसी अवस्था को प्राप्त होने पर और खाली इसी अवस्था को प्राप्त होने पर कोई भी निषिद्ध कर्म करेंगे तो पाप नहीं होगा, ये बात नहीं। कौन ऐसे कर सकता है? विद्या धर्म यशोवत स्वात्म परोपकार समर्थस्य। इसमें विशेषण दिया, जिसके पास विद्या है, कुछ धर्म करता है, यश ख्याति भी है, और इतने होने के बाद भी यदि एकदम अंतिम अवस्था है, खाने के बाद भी ज्यादा समय बचने वाला नहीं, मरने वाला है, अथवा किसका उपकार कुछ नहीं कर पाता है, अपना भी कल्याण नहीं कर पाता है। जो बहुत ऐसे लोग हैं, अपना ना कल्याण करते, खा करके बचना ये अपना कल्याण नहीं है, भोजन करके जीवित रहना ये अपना कल्याण है। भोजन करना, जीवित रहना, तो पेड़ भी जीवित रहता, पशु पक्षी तरवपी जीवंती जीवंती मृग पक्षिण सजीवती मनो यस्य मनने न उपजीवती। वृक्ष भी जीवित रहते हैं, पशु पक्षी भी जीवित रहते हैं, वो जीवन का क्या हिसाब है? ऐसे मनुष्य जीवित रहता, खाकर जीवित रहता, तो उसका जीवन मरना समान है। तो जीवन किसको कहेंगे? सजीवती मनो यस्य मनने न उपजीवती, वही जीवित है, उसका जीवन सार्थक है जो मनन परमात्मा चिंतन करके जीवित रहता है। यदि परमात्मा चिंता नहीं करके खाली इसी जीवित रहता है, उसका जीवन पशु पक्षी पेड़ पौधे के जीवन के समान है। तो ये किसी स्वात्म परोपकार समर्थस्य, जो अपना भी उपकार करता है, दूसरे को भी उपकार करने के लिए समर्थ है, दूसरा उपकार करने के लिए। विद्या धर्म यश भी है, अपना अथवा अन्य के कल्याण करने के लिए समर्थ है, और इस अंतिम अवस्था को प्राप्त होने पर ये कर्म करता है तो पाप स्पर्श नहीं होगा, अन्यथा पाप स्पर्श होगा। इतने अवस्था भी अभी जैसे नहीं खाए तो मर जाएगा, और विद्या धर्म यश, उसके पास विद्या भी धर्म है, धर्म पालन करने वाला है। ये नहीं कि हमेशा ही सही झूठा खाता, निषिद्ध भोजन करता, ऐसा नहीं। धर्म पालन करते हुए भी इसी अवस्था को प्राप्त हुआ, और थोड़े झूठा खाकर शरीर धारण करे तो अपना भी कल्याण कर सकता है, अन्य का भी उपकार कर सकता है। जो अपना कल्याण ही अपना कल्याण, थोड़े कुछ अपना संध्या वंदन करते हैं, भगवान का भजन करते, नित्य कर्म करते, गायत्री आदि जप करते, अपना कल्याण है, और दूसरे को उपदेश कर सकते हैं, ब्राह्मण है, तो ऐसे कर्म करेगा तो पाप नहीं होगा। फिर उसे के में स्पष्ट भगवान भाष्यकार कहते, यदि उसी अवस्था में प्राप्त होने पर भी मरणासन्न हो गया, धर्म यश आदि अपना दूसरे कल्याण करने के लिए समर्थ है, किंतु प्राण रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा उपाय है तो भी नहीं करना चाहिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है तो निषिद्ध कर्म कर लिया, झूठा खा लिया तो पाप लगेगा नहीं, अन्य कोई उपाय है कर लिया तो भी पाप लगेगा। ये अन्य उपायांतर है, अजुगुप्त सिद्ध अनिंदित, अन्य कोई उपाय वो भी निंदित है, वो अलग बात है। अन्य कोई उपाय है अनिंदित, शास्त्र विहित कोई उपाय है जिसके द्वारा प्राण रक्षा हो सकती है, तब ये खाना नहीं चाहिए, झूठा भी तब दोष होगा। और जो अपने को ज्ञानी मान करके, ज्ञानी लोगों को कहला करके कहते, ज्ञान होने के बाद को विधि को निषेध, जो चाहिए हम कर सकते हैं, लोग के सामने अपने ज्ञानित्व का आख्यापन करके ऐसे कर्म करेगा तो नरक पात से आदेव, भगवान भाष्यकार कहते हैं। ज्ञानित्व का बहाना दे करके, उसको निमित्त दिखा करके निषिद्ध कर्म करेगा तो नरक जाएगा। ज्ञानावलेपन कुर्व तो नरक पात, ये एक समय में किसी को बीमार रोग हुआ, ये रोग चिकित्सा करने पर तो ठीक नहीं हो पाया, कोई मीमांसा कोई वैद्य कहते हैं इसके अंदर कुछ कीड़ा घुसा हुआ है, तो उनको बताए मीमांसा जो मद्यपान करेगा तो इसका रोग ठीक हो जाएगा। वैद्य ब्राह्मण को बता दिया, कुछ गोप्य गोप्य कुछ बता दिया, तो मद्यपान करने से इसकी कीड़ा निकल जाएगा तब रोग ठीक हुआ, नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं। पूछा गया मीमांसक जयमिनी महर्षि, तो क्या अब मद्यपान करेंगे ब्राह्मण? तो मद्यपान तो निषिद्ध है, ब्राह्मणों का मद्यपान बहुत निषिद्ध है। कोई मद्यपान करता है तो शास्त्र में उसके लिए प्रायश्चित विधान किया गया, पाप कर्म प्रमाद से हो जाए तो पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित विधान हुआ, किंतु मद्यपान करने वाले के लिए पाप कर्म निवृत्ति के लिए प्रायश्चित क्या है? कभी सुना है? कोई मद्यपान करता है तो प्रायश्चित के लिए क्या करना है? मद्य बहुत मद्य बड़े बर्तन भांडे में रख के गर्म करना, बहुत गर्म हो जाए, एकदम अति अधिक तो गर्म हो जाए, फिर उसको उसके ऊपर डालते जाओ। मद्य बहुत गर्म हो गया जला, उसको लेकर उसके ऊपर डालो, कब तक? मरते मर जाए। मैं गर्म मद्य डाल के उसको मार देना, यही प्रायश्चित है। जबरदस्ती नहीं, प्रायश्चित स्वयं कहेगा मेरे ऊपर डालते जाओ। प्रायश्चित विधान करना है तो गर्म मद्य को गर्म करते 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 उसको डालो, मर जाए और जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं, ये प्रायश्चित है। इसलिए मद्यपान के क्या, उसके स्पर्श भी नहीं करना, मद्यपान करने वाले के पास भी नहीं जाना चाहिए। कोई मद्यपान करते तो उनके साथ संबंध नहीं रखना चाहिए, घर में मद्य आना नहीं चाहिए, कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और जो विवाह आदि में मद्य आदि पीकर नाचने कूदने के वाले आजकल चलते हैं, इसमें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने बेटी की शादी कराते तो भी वो आएंगे तो बरात कहेंगे हमको रूपया दो, कहते उनको रूपया देगा मद्य पीकर नाचने के लिए, नहीं देना चाहिए। कोई बारात आएंगे तो पीएंगे, नहीं करना चाहिए बिल्कुल। उसके द्वारा अलक्ष्मी का प्रवेश होता है, देवता लोग दूर भाग जाएंगे, पितृ लोग दूर भाग जाएंगे, भूत पर जो पिशाच का ही भाग होता है, अशांति होती बिल्कुल। कभी शादी विवाह के समय कभी भी कोई कहते ना इसमें ज्यादा नशा नहीं, ज्यादा काम क्या है, उसको स्पर्श ही नहीं करना चाहिए मध्य। तो ऐसे शास्त्र में निषेध है। ये ब्राह्मण को कहा गया ये मद्यपान करेगा तो रोटी हो जाएगा, तो अभी विचार करते क्या उसको जीवन रखने के लिए निषिद्ध कर्म करना चाहिए अथवा नहीं करे, रोग कर मर जाए, कष्ट सहन करना चाहिए। तो जमीन महर्षि का बताया नहीं, मद्यपान करो ठीक हो जाएगा। तो वहां सरस्वती प्रकट हो गई, क्या जमीनी तुम्हें इसे साथ दुशास नहीं करो, इसे तुम समर्थन कर दो तो मद्यपान करने के लिए, पाप कर्म में कैसे समर्थन करते हो? तो ये कहता है पिवरे मद्यपान पियो तुम, ये बाघ देवती है, ये मीमांसा का रहस्य क्या जानती है? मीमांसा में इतने ज्ञान ही, कहते बाघ देवती शब्द समृद्ध देवते, मीमांसा का रहस्य इसको क्या मालूम है? पियो तो उसे मध्य जो कहा तो फिर लिया सबके राजा के सामने ब्राह्मणों सभा में जमीनी वर्ष पियो, मैं कहता पियो कुछ नहीं होगा। मीमांसा के महर्षि वो जो मद्य लेकर के यहां तक लाया, उसके ऊपर छींक होकर के वो कीड़ा निकल गया, ठीक हो गया। अभी कह रुको रुको रुको, अब मद्य पीना नहीं। अभी इसके पर विचार हुआ, जब मद्य पाने के बिना ही हो रोग निवृत्ति हो, कीड़ा निकल गया, रोग निवृत्त हो गया, तो फिर मद्यपान करने के लिए कैसे अनुमति दी? अनुमति तो अब भी है, दूसरे उपाय नहीं है, तब निषिद्ध कर्म करेगा तो पाप नहीं लगेगा। अभी तो उसके बिना रोग निवृत्ति होगी, दूसरा उपाय है, तो कैसे मद्य के लिए अनुमति दी? फिर कहा ये वैद्य ने बताया था, मद्यपान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मद्यपान नहीं करता है उसको यदि कहीं थोड़ा ऐसा सूंघ लो वो दूर से रखेगा, स्पर्श ही नहीं करेगा। जो मध्य स्पर्श करने के लिए बिल्कुल मध्य स्पर्श नहीं करते, करना नहीं चाहिए करके दूर में, उनको स्पर्श करने के लिए भी बड़ा कष्ट होता है। जैसे कोई अस्पृश्य है, कोई हड्डी आदि के हैं गिरा, कुछ अपरिष्कार कोई जानवर गिरा हुआ, कोई कहेगा इसको इधर कर दो इधर कर दो, कोई स्पर्श नहीं करेंगे, स्पर्श करने वाले कोई कर सकते, सब लोग नहीं करते। हाँ पैर में लग गया तो जाकर धोएंगे, अपवित्र हो गया, शास्त्र तो विहित है, अस्थि आदि का स्पर्श हो गया तो वस्त्र के साथ जाकर के स्नान करना चाहिए। वो भी अस्थि यदि कहीं अभी मांस आदि लगा हुआ गिलापन है तो कपड़ा के साथ जाकर स्नान करना है, ये सब भीत है। तो उसको स्पर्श करने के लिए पैर में स्पर्श, अपरिष्कार कोई होता है तो पैर से भी स्पर्श नहीं करना चाहते। तो जो जिनका इतने निषेध है, मद्य को छूना भी नहीं चाहते, वो लेकर सूंघेगा नहीं। अब पीने के अलावा हम कहेंगे जब इसको पास में आएगा तब पता इतनी जल्दी नहीं पिएगा, ऐसा करते करते सोचते सोचते उसी के गंध से उसका रोग निवृत्त हो जाएगा, ये हमको मालूम है। किन्तु इतना नहीं करता तो वो दूर में रखता, छूता नहीं, छूता तो ऐसे ऐसे करता। और जितने सूंघने से रोग कीड़ा निकलना है इतने करने के लिए उसको कहा पीने के लिए, पीने के लिए जब लेगा वो ठीक हो जाए पहले मालूम है। तो इसके लिए कहा गया जो निवृत्त हुआ, अर्थात ये सिद्ध हुआ यदि कोई दूसरा उपाय है तो निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय है सूंघने से ठीक हो जाता है, एक रोग ठीक होगा, और सूंघने के लिए उसको नहीं कहकर पीने के लिए कहा गया, जब पीने के लिए लाएगा थोड़ा उसका गंध से वो रोग निवृत्त हो जाएगा, पीने के लिए बंद कर देंगे। यहां स्पष्ट करते हैं भगवान वासीकर, ऐसी अवस्था अंत अवस्था को प्राप्त होने पर जो ऐसे कर्म करेगा पाप स्पष्ट नहीं होगा। किसको? भाष्य में है विद्या धर्म यशो, तो विद्या धर्म यश वाला हो, अपना और पर उपकार के लिए समर्थ हो, इसी अवस्था में प्राप्त होने पर पाप स्पष्ट नहीं होगा। वो भी यदि जीवन के प्रति दूसरा कोई अनिंदित उपाय हो तो इसे निषिद्ध कर्म करेगा तो पाप होगा। और ज्ञानित्व का बहाना करके कोई यदि निषिद्ध कर्म करता है नरक पात होगा। बहुत लोग ऐसे ज्ञानित्व का ज्ञान तो नहीं होता है, ज्ञानित्व का आरोप करे दूसरे को बता करके, ज्ञानी हम जो चाहे कर सकते हम कोई विधि निषेध नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान होने के बाद कोई निषिद्ध कर्म नहीं करके सन्मार्ग में चलने पर अंतकोण शुद्ध हो कभी जाकर के ज्ञान होता है, यतताम अपी सिद्धानंद कश्चिन व्यक्ति, कितने प्रयत्न कर जाने पर वहां ते जाता है ज्ञान होने के बाद, उससे जब मुझे ज्ञान हो गया अभी जो तुम्हें पहले फेंक दिया था जिसको छोड़ देते हैं उसको फिर ग्रहण करने के लिए आया, जिसको कितने पहले निषिद्ध कर्म के छोड़कर आगे बढ़ते बढ़ते जाकर के ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद कहेगा ये जो चीज को जैसे अपने मल का सोच करके जो निकाल दिया उसको देखने चाहिए, ऐसा करेगा इसमें आएगा क्या नहीं? वो कहेगा हमको ज्ञान हो गया हम जो कुछ कर सकते हैं, ये सब ठीक नहीं है। ऐसे बहुत लोग करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि कहते हैं हमारा ज्ञान हम कुछ कर सकते हैं। कोई व्यक्ति संन्यास लिया गुरु से काषाय वस्त्र पहन करके हो गया, कुछ देने के बाद सफेद पहनने लगा, कहा कपड़ा में क्या रखा है? और भक्त लोग समझा थी कपड़ा में क्या रखा है, कपड़ा में तो कुछ नहीं, तो कपड़ा में क्या रखा अगर तुमको अभी समझ आया, तुम्हारे गुरु को समझ नहीं आया था, गुरु जी तेने तुमको काषाय वस्त्र दिया उसने उस समय साष्टांग प्रणाम करे काषाय वस्त्र ग्रहण किया, अभी तुमको समझ आ गया कपड़ा में कुछ नहीं, ये तो सबको मालूम है कपड़ा में कुछ नहीं, कपड़ा में कुछ नहीं, कपड़ा से कुछ मोक्ष नहीं होता है या काषाय वस्त्र पहनने से मुक्त हो जाए ये बात नहीं, किन्तु कपड़ा में कुछ नहीं रखा करके सफेद वस्त्र पहना इसमें क्या बिगड़ेगा? जो गुरु ने दिया काषाय वस्त्र था इतने देर पहना, अभी अपन दिखाने की हमको ज्ञान हो गया अभी कुछ भी कर सकते हैं, तो कपड़ा में कुछ नहीं रखा तो ये सफेद वस्त्र पहन तो मैं कहा तुम साड़ी पहनो साधु है ब्रह्म जय साधु है साड़ी भी पहनो, कपड़ा में कुछ नहीं रखा तो पैंट कोट भी पहनो, कोट भी कोई कोई पहन लेते हैं, पैंट पैंट भी पहन लेते हैं, विदेश कोई जाते तो पैंट साड़ी भी पहन लेते हैं साधु। तो ये आया ज्ञान को देखा करके कोई करता तो नरक पाता होगा, अर्थात ये किसी अवस्था में अभी देखो पानी अन्यत्र मिल जाएगा तो झूठा खा लिया तो कोई को एकादशी के दिन भूल जाते हैं अन्न खाने लगे, ये भी क्या कहते चलो सूर तो हो गया खा लो आज ये नहीं चलेगा, यदि सूर हो गया निकला तो पता चला वही बंद करो, इतने जितने खाया एक थोड़ा बिस्कुट खा लिया पता चला कि आज एकादशी आगे उस दिन नहीं अन्न खाओ दूसरे दिन फिर एकादशी करो, ये दंड है। ये नहीं कि अभी आरंभ कर लिया तो चलो आज अन्न खा लेंगे काल को पलाहार कर देंगे, वो नहीं चलेगा। अन्न यदि खाते समय पता चला जितने खाए आगे अन्न नहीं खाना और दूसरे दिन पलाहार करो तो आगे के लिए भी इतने मात्र से नहीं होता है, एकादशी जो दिन उसी दिन होना चाहिए, उसी दिन यदि अन्न खा लिया तो निषिद्ध भोजन तो हो गया, इसका नहीं कि निषिद्ध भोजन कर लिया तो आगे भी शाम को खा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पता चलने के बाद फिर नहीं खाना चाहिए। तो यदि दूसरा उपाय है तो नहीं करना चाहिए निषिद्ध, पानी दूसरे से पी सकता है इसे झूठा नहीं पिया और भोजन नहीं करता मर जाता तो खा लिया, तो पानी पीने के जो खाने लगा झूठा वो पानी थोड़ा पी लेने के लिए नहीं, पानी तो पी सकते कहीं नहीं ग्रहण किया, इसी अवस्था को प्राप्त होने पर भी क्योंकि पानी हमको मिलेगा, यदि पानी नहीं मिलता कहीं आसपास तब तो झूठे भी पी ले। ये श्रुति शिक्षा देती है अपने धर्म का उल्लंघन ऐसे किसी स्थिति होने पर भी उसको छोड़ करके निषिद्ध कर्म नहीं करे। तो बहुत लोग करते कर लो क्या हो गया, ऐसा नहीं, बहुत लोग करते तो क्या हो गया, बहुत लोग नरक जाते हैं तो क्या अभी नरक जाओगे क्या, बहुतों को नर्क जाए तो हम क्यों जाएंगे? बहुत लोग कोई कोई पिटाई करता है लोग जाते हैं, तो आप कभी जाते होगा तरह पिटाई करता तो कौन जाएगा? इसलिए सब लोग करने पर भी नहीं करना चाहिए, अपने शास्त्र को जाना समझा। ये वेद उपनिषद मंत्र, वेद मंत्र के अंतर्गत तो उपनिषद कोई वेद के बाहर नहीं है, जो कहा गया उसमें इसे सीखने का है। निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए कोई भी हो, ज्ञान को प्राप्त कर लिया कह करके निषिद्ध कर्म करना हो तो क्या नर्क जाए? ऐसा नहीं, ज्ञानी तो वही करे जो उसको दे करके अन्य लोगों का भी कल्याण हो, या तो नहीं तो शरीरधारण करने के लिए क्या आवश्यकता है? शरीरधारण जीवित रहने के लिए क्या जरूरत है? वो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया तो यदि कोई नहीं तो क्यों खाते पीते फिर? ज्ञान हो गया खाना क्या जरूरत है? ज्ञान हो जाने का खाने की आवश्यकता है ना, भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, जीने की आवश्यकता है, रुपया कैठी करना है, मकान बनाना, आश्रम बनाना, ये सब तो चाहिए, घूमना फिरना करना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और वो काशा वस्त्र पहना था इसको फेंक देना, यदि कुछ नहीं करना है तो ज्ञान ज्ञान हो गया, कुछ नहीं चाहिए भोजन भी छोड़ो बैठ जाओ, देहधारण क्यों करना? किस लिए देहधारण का क्या प्रयोजन है? जो प्रयोजन सिद्ध हो गया आपको, ज्ञान हो गया मुक्त हो गए, अभी क्या जरूरत है खाने का? और ज्ञान हो गया तो आपको भेद नहीं दिखता है, सफेद वस्त्र काशा वस्त्र में भेद नहीं दिखता है, विहित कर्म निषिद्ध कर्म भेद नहीं दिखता है। यदि भेद नहीं दिखता है भोजन के समय कोई इतने गोबर मिट्टी देगा खा लोगे? भेद नहीं दिखता है ना, भात के स्थान चटनी के स्थान पर गोबर दे दे, भात के स्थान पर इतने रेत रख दे खा लेगा ना? ज्ञान हो गया ना, भेद नहीं दिखता है। उस समय भेद दिखता है, थोड़ी मीठा खट्टा नमक मिर्ची कम ज्यादा हो गया तो ज्ञानी कहेगा या नहीं कहेगा? पता नहीं चलेगा। यदि उस समय पता चलता है भेद कैसे नहीं दिखता है, जब व्यवहार है तब तक भेद दिखता है, जब तक तब तक शास्त्र उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र उल्लंघन करते हैं उससे अन्य का कल्याण होता है, ज्ञान ऐसे करता है जो आचरण करता है, आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं, वो जैसे करता है लोग उसको आचरण करते हैं। इसलिए निषिद्ध कर्म करना किसी प्रकार नहीं चाहिए, यही दिखाते हैं यहाँ। सह खादित्वातिशेषान जाया आजहार सागर एव सुभिक्षा बभुव तान प्रतिगृह निदधो। खा करके थोड़ा खाने के बाद कुछ रहा अतिशेषान जाया आजहार, अपने पत्नी है उसके लिए लेकर गया, उसस्ती उरद झूठा, पहले तो झूठा खाया फिर अपने भी झूठा हुआ, उसको लेकर जा रहा है क्योंकि अपनी पत्नी है वो भी भूखी होगी उसको तो कुछ देना है। वो जो लेकर गया सा अग्रेव सुभिक्षा बभुव, जिसके घर में थी छोटी है तो वहां आसपास कोई उसको थोड़ा कुछ दे दिया खा लिया, भूखी भूखे है तो जो कुछ दिया अग्रेव सुभिक्षा कुछ खा लिया था। किसके घर में थे ये तो कहीं जाकर मांग कर लाया, उसको तो कुछ कोई खा लिया था तो उसको लेकर दिया। जो तान प्रतिगृह निदध हो, पति जब दिया ले लो उसको लेकर के वो रख दिया, खाद्य काम में आएगा आगे, फेंकने का नहीं, अन्न फेंकना नहीं, और स्त्री स्वभाव से ले करके रख दिया, ठीक करके निरा करके रख दिया। सह प्रात संजिहान उवाच यद वत्तान्नस्य लभेमहि धनमात्रान् राजसो यच्छते समा सर्वैरार्तृजैर्वृणीतेति। प्रातः काल उसका समझ लिया पति ने लेकर रख दिया कहीं खा लिया था, वो जानता है पति ने रखा है झूठे उड़ते, तो उसको निदा उठते ही थोड़ा इसे शब्द बोलता, थोड़ा कुछ खाद्य मिल जाता तो उसको सुना करके अपने आप सोचता थोड़ा कुछ खाद्य मिल जाता तो खा करके जाते हैं, राजा यह करेगा जाए तो कुछ धन हमको मिल जाएगा, ऐसे अपने आप नहीं सोचता है। तो वो भी क्योंकि खाने की इच्छा है खा कर इतने कमजोरी है, राजा कुछ या करता है वहां जाए निकले शक्ति नहीं है, और खाने की इच्छा है तो उसको दिया था खाने के लिए, वो भी खाया नहीं खाया उसको भी भूख लगती वो भी खाएगी, उसको हम खाकर लेकर चले थे। इसलिए उसे इसे सुना करके बोला, कैसे कहते संजिया में निद्रा छोड़ते हुए अंदर बोलता है सोना उठ करके, पत्नी को सुनते जैसे सुनाई पड़े, या तो बत अन्न से लभे मही बत खेत से किन्न होकर के थोड़ा सा कुछ खाद्य मिल जाता तो लभे मही धन मात्रान तो धन हम प्राप्त कर लेते, राजा सो अच्छे थे राजा या करेगा। स मां सर्वीर आरतुजेर वृणीत, मैं जब वहां जाऊं ऋत्वि कर्म, ऋत्वि के कर्म को कहते आर्पिज्यम। मैं यदि वहां जाऊं राजा मजा मेरा वरण करेगा, बहुत बड़े विद्वान है राजा, या करेगा कुछ ब्राह्मण लोग या कर रहे हैं, मैं वहां उपस्थित हो जाऊं तो राजा मुझे मेरा वरण करेगा तो थोड़ा धन उनको मिल जाएगा, कुछ थोड़ा खाद्य हो जाए। तो इसे कहने पर तुम जायो वाच हंत पत इम एव कुलमासाई तान खादी ताम यज्ञ विदतम ए आय। ऐसे जो उस सत्य ने कहा, तम जाया उवाच पते ने कहा हंत ये लीजिए हे पते पत पत इमे एव कुलमासाई थी, यही जो जो कुलमासा आपने लाए थे यही रखा गया लीजिए। कुलमासा उरद है, खा रहा था हाथी पकाने वाला, हाथी पालन करने वाला, महावत कहते हाथी पालन करने वाले, उसका झूठा ये भी खाया, इसका झूठा वो लाया, बासी हुआ दो की झूठा फिर बासी रखा, कुरो दे ही है इसको। तान खादित्व अमु यज्ञम वितम ये आय, उस उड़द झूठे को खा करके फिर यज्ञ में गया। यज्ञम वितम विस्तारित अथा ऋतु लोग सब बैठ गए कर्म करने के लिए, सब तैयार होकर बैठे वहां जाकर पहुंच गया, और खाली पहुंच जाने से तो राजा उनको वर्णन नहीं करेगा। तत्र उद्गात्री नास्ता विस्तुष्य मानानुपोपवेश स प्रस्तुतारम उवाच। उद्गाता है सामवेद के ऋत्वि का नाम उद्गाता, सब तीन वेद के ज्ञाता तीन ऋत्वि के होते हैं, यजुर्वेद के उद्गात का नाम है अध्वर्यु, और ऋग्वेद के उद्गात ऋत्वि का नाम होता है होता। जो सामवेद के ऋत्वि के उद्गातीन आस्तवे स्तोष्यमानान बहुत थे, स्तुति करेंगे अभी कर्म करने के लिए, उद्गातर पुरुष के पास जाकर के उपविवेश उनके पास जाकर बैठ गया, बैठकर सह प्रस्तुतारम उवाच। जो प्रस्ताव को गान करेगा शाम के भाग गान करेगा गाने वाला, उससे बोला प्रस्तुतर या देवता प्रस्ताव मन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रस्तुष्यसि मूर्धाते विपतिष्यति इति। हे प्रस्तुतर, प्रस्तुत्री शब्द प्रस्तुति करने वाले, या देवता प्रस्ताव अन्वायत्ता जो साम के भाग है, प्रस्ताव नाम का भाग है, उसी भाग में जो संबद्ध देवता है, ताम चेत अविद्वान प्रस्तुष्यति, उसे देवता को नहीं जान करके मेरे सामने स्तुति करोगे। शाम के जैसे है इंद्र का अभिमानी देवता, अग्नि अभिमानी देवता है, अग्नि देखते हैं अभिमानी देवता अलग, शाम में अलग अलग देवता है, प्रस्ताव के संबंधी जो देवता दिग अभिमानी देवता है, इसी प्रकार शाम भाग में जो देवता संबद्ध देवता है उसको नहीं जान करके, ताम चेत अविद्वान नहीं जान करके मेरे सामने तुम प्रस्ताव गान करोगी। कोई विद्वान यदि है, उससे अधिक विद्वान है, उसके सामने नहीं जानकर कर्म करने वाला दोष होता है। कर्म करेगा तो विद्वान की अनुमति लेकर के, आज्ञा हो हम शुरू करें, वो अनुमति देने से शुरू करेगा। ये भी परंपरा, विद्वान लोग होते तो ऐसे महापुरुष होते तो पूछते हैं आज्ञा लेकर के, उन्हें अनुमति लेकर के कर्म करते हैं। और देवता को तुम नहीं जान करके मेरे विद्वान के सामने तुम यदि स्तुति करोगे, इस अन्याय अपराधी के कारण तुम्हारा सिर गिर जाएगा, प्रस्तुष्यति मूर्धाते विपतिष्यति थी। तो फिर वो चुप हो गया, नहीं जानता है ठीक से, तो विद्वान के सामने करोगे तो, विद्वान के बिना यदि करता है तो कोई आपत्ति नहीं, विद्वान के सामने नहीं जानकर तुम मेरे अनुमति के बिना करोगे तो सिर गिर जाएगा, और यदि मैं कहूं ऐसे कहूं तो गिर जाएगा। और तो कह दिया तो कर्म करने के लिए अधिकार तो है, देवता को नहीं जानने वाले भी उपासना नहीं करने वाले भी कर्म कर सकता है, किंतु यदि कोई विद्वान सामने है उसकी आज्ञा लेकर अनुमति लेकर करना पड़ेगा, उसके बिना करेगा तो ये यदि कहेगा तुम्हारा सिर गिर जाएगी तो गिर जाएगा। तो चुप हो गया, आप कर्म नहीं किया। एवं उद्गातार मुवाच उद्गातर या देवत उद्गित मन्वायत्ता ताम चेद विद्वान उद्गाष्यसी मूर्धा ते विपतिष्यति। एवं ठीक इस प्रकार जो सांवेद के ऋतिक उद्गाता उद्गान करने वाला उसको कहा हे उद्गातर, उद्गात्री शब्द है, हे उद्गातर आप जो स्तुति करने जा रहे हो, जो देवता उद्गीतम अन्वायत्ता शाम के भाग उद्गीत के संबंधी जो देवता ताम चेत अविद्वान उद्गासेसी, उसी देवता को नहीं जानकर जब तुम उद्गान करोगे मुर्दाते विपतिष्यति इति, तुम्हारा सिर गिर जाएगा इति, उसके बाद की समाप्ति के लिए तुम्हारा सिर गिर जाएगा, तो भी चुप हो गया। एवं एवं प्रतिहर्तारमवाच, प्रतिहर्तर या देवता प्रतिहार मन्नायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रतिहरिष्यसि मुर्दाते विपत्तिष्यति इति ते समारता तूष्णीम आशांच क्रीरे। प्रतिहर्ता प्रतिहार नाम के साम भागे हिंकार प्रस्ताव उद्गित प्रतिहार निधनम, एक प्रस्ताव भाग है एक प्रतिहार नाम के। शाम के पांच भाग में प्रथम है हिंकार, उसके बाद प्रस्ताव, तृतीय नाम उद्गित, आज चतुर्थ है प्रतिहार और पंचम होता है निधनम। ये आगे आएगा मूल में पांच भाग वाले। तो यहां उद्गित उपासना का प्रसंग था, उद्गित उपासना के प्रसंग से उद्गित के पूर्व भाग का नाम प्रस्ताव और द्वितीय भाग का नाम प्रतिहार चतुर्थ का, ये दोनों पार्श्व ये दोनों उपासना अभी कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रस्ताव और प्रतिहार उपासना के लिए दोनों। उनको जाकर कहा प्रतिहर्ता को, कहा प्रतिहार को गान करोगे, हे प्रतिहर्तार जो प्रतिहार के साम भाग तुम गान करने जा रहे हो, जो देवताओं से प्रतिहार के संबंधी अनुगत है उनको यदि नहीं जान करके ये प्रतिहार का गान करोगे मेरे सामने तुम्हारा सिर गिर जाएगा। इति कहकर उसको जो कहा वो भी चुप हो गया। तीनों प्रस्ताव प्रस्तोता उद्गाता और प्रतिहर्ता ते समारता, अभी कर्म करने के लिए प्रारंभ करके तैयार हो गए थे, आरंभ करके गान करने के लिए अब निवृत्त हो गए, चुपचाप हो गई, ऊपर तो होगी मूर्धपात भय से जैसे कहेंगे तो सिर गिर जाएगा, वह करके जो हाथ में कुछ लेगा छोड़ करके हटकर बैठ गई, छोड़कर पीछे थोड़ा हट करके बैठ गई, चुप हो गई। जो चुप चल रह गए राजा यजमान था, अतः हेन यजमान उवाच भगवंत व अहम विविदिशाणीति उषस्थिरस्मि चाक्रायणीति उवाच। यजमान राजा देखा अभी सबको ऐसे कह दिया तो तीनों अभी व्यक्ति ब्राह्मण तीनों ने अलग अलग ब्राह्मण बहुत है सब चुप हो गए डर करके। तो राजा का हे भगवान मैं आपको जानना चाहता हूं आप कौन है, भगवंतम वे अहम विविध दिशाणी में आपको जानना चाहता हूं बताइए आप कौन है। तो ये का उशक्ति रश्मि चाक्रायणी थी होगा सर, क्या मैं उशक्ति हूं, मेरा नाम उशक्ति है और चाक्रायण मुझे कहते क्योंकि मैं चक्र का पुत्र हूं चाक्रायण। राजा उनको पहले जानता था सुनना था नाम सुनकर के उनको ढूंढा था उनको ला कर्म करने के लिए किन्तु नहीं मिला तो अन्य ब्राह्मण को बुलाया था। राजा कहता है सोवाच भगवंत वा अहम ए भी सर्वीरार तुझे परिशिषम भगवतो वा अहम अवित्वान्यान अवृषि। यजमान के लिए भी यदि उत्कृष्ट ब्राह्मण को ही प्राप्त है उनको वरण नहीं करके निकृष्ट ब्राह्मण को वरण करना वो भी अनुचित है। पास में कोई ब्राह्मण जानते हैं उनको छोड़कर दूसरे दूर में चले गए बुलाने के लिए उनका अपमान हो जाता है। कर्म करने के लिए ब्राह्मण को बुलाना है, पास में कोई ब्राह्मण जानकारी है उनको छोड़कर उनको बुलाया तो अपमान होता है, उनको बुलाए तो उनको ही बुलाए सम्मान करे सबको। बड़े विद्वान है प्रसिद्ध है उनको नहीं बुला करके सामान्य विद्वान के द्वारा कर्म करते तो भी अपराध है। ये पूजा में इस प्रकार होता है अपूज्या अत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रम चत्वारी तत्र नश्यन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जहां अपूज्य की पूजा होती है और पूज्य की पूजा में व्यतिक्रम होता है ऐसे होता है कोई अपने किसको मानते हैं अपूज्य होने पर उनकी पूजा करते उनको बहुत मानते हैं और बहुत कोई पूज्य होने पर उनको नहीं मानते। अपूज्या अत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रम चत्वारी तत्र नश्यन्ते आयुर्धर्म यशो बलम। कहीं आयुर्धन यश बल में से कहा गया आयु धन धर्म यश कीर्ति बल सब नष्ट होता है, अर्थात ये अपूज्य की पूजा पूजा पूज्य के व्यतिक्रम ठीक नहीं। इसलिए अपने से बड़े जो कहीं जहां सम्माननीय है सबको सम्मान करना चाहिए, व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। सम्मान करने से अपने हानि नहीं होती है। किसी प्रकार नाराज हो गए घर में भी, कभी क्यों नाराज हो गए पति पत्नी, कभी कुछ हो गया तो भी पत्नी का कर्तव्य पति को प्रणाम करे सम्मान करे। पिता पुत्र में, भाई भाई में, इस प्रकार दो भाई में छोटा बड़ा है, घर में कुछ हो जाए भाई भाई भी बड़े है तो छोटा भाई को भी उनको प्रणाम करे सम्मान करे। इसका उल्लंघन कोई करता है तो पाप लगता है, दोष होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा नम्र रहना चाहिए। अगर कभी कुछ हो जाता है ठीक है, हो गया तो अपने कर्तव्य प्रणाम करना, फिर नम्र रहना, झगड़ा को आगे बढ़ाना नहीं, फिर प्रणाम करके फिर प्रारंभ करना, सब छोड़ो बोलो, ये करना चाहिए। तो ये कहा मैं आपको भगवंतम अहम ये भी सर्वीर आर्तिजी परियम, सारे ऋतु कर्म करने के लिए आपको मैं ढूंढा था, अर्थात आप मुख्य रहेंगे आचार्य बन करके, अन्य लोग करेंगे आपको सारे कर्म दायित्व देने के लिए ढूंढा, किंतु भगवतो वा अहम अवित्वा अन्य नवृषि, आपको मैं प्राप्त नहीं करके अन्य का वर्णन किया, अन्य को जो बुलाया ये नहीं कि आपको मैं नहीं उपेक्षा करे, ऐसा नहीं, आपको किसी सारे ऋतु कर्म करने के लिए मुख्य आचार्य बनने के लिए आपको मैं सबके लिए बुला था ढूंढा, किन्तु नहीं मिला, नहीं प्राप्त कर पाया, इसलिए इनको वर्णन किया था। अर्थात स्पष्ट कर दिया मेरा दोष नहीं, अभी जब आप आए अभी आप सब ऋतु कर्म दायित्व आप लीजिए। भगवान स्तव में सर्वे आर्तृजिये रीति तथे त्यथ तरत एवं सम्मति श्रेष्ठा स्तुवताम यावत्भ्यो धनम दद्यावन मम दद्या तथे यजमान वाच। और राजा कहते भगवान तो एवं मैं सर्वेर आर्तृजे इति, अभी आप आगे सारे द्वितीय कर्म करने के लिए आप ही सब कुछ आप करिए, कराइए आप करिए, क्यों सब लोग चुप हो गए नहीं जानते, जो ब्राह्मण थे ये प्रश्न पूछा तो उन देवता को नहीं जानते, बोलोगे तो सिर गिर जाएगा, सब चुप हो गए, समझ लिया इनको मालूम नहीं ये श्रेष्ठ है, तो कहा आप ही सब द्वितीय कर्म के लिए मैं आपको वर्णन करता हूँ प्रार्थना करता हूँ। इति कहने पर ये तथे इति ठीक है, स्वीकार कर लिया सती चक्रायण, उनको तो ही चाहिए था क्योंकि दानव के लिए गए थे, तो क्या तथे इति, किंतु क्या करना पड़ेगा, अब ये यदि ऋतु कर्म करने के लिए दायित्व तो ले गए, इतने ब्राह्मणों को बुलाया, फिर वो ब्राह्मण ऋतु कर्म नहीं करेंगे ऐसे खाली जाएंगे, ये भी अनुचित होगा, और ये आकर के उन काम करेगा और उनको दुख देगा, ये भी अधर्म है। फिर कहा अथ तरी एतव समर्थ शिष्टा सुबंता, अब मैं अनुमति देता हूं, मेरे से अनुमति को प्राप्त करके यही कर्म ये लोग कर स्तुति करे, जो जैसे कर्म करे थे वे लोग कर्म करे, मैं अनुमति देता हूं करे। विद्वान यदि अनुमति दे दिया उसके अनुमति से कर सकते हैं, मैं उनको प्रसन्न होकर के सम्यक प्रसन्नचित होकर के अनुमति देता हूं यही सब कर्म करे, तो ये कर्म करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, कहते यावत्भ्यो धनम दद्या तावन मन दद्या, इनको भी धन देना है, इन सबको जितने धन तुम देना है देना था देना है, ये सबको जितने देना है मुझे भी इतने देना है, मुझे देना इतने, अर्थात ये भी धन प्राप्त करे, जैसे प्राप्त करना तो प्राप्त करेंगे, इन सबको जितने तुमको देना है मुझे अकेले उसने इतने देना है। यावत तु एभ्यो धनम दे दिया, इन सबको जितने तुम दोगे इतने मुझे देना, इति राजा का तथे यजमान वाचन, जो कुछ कर्म करने के प्रारंभ करते हैं सत्कर्म करते हैं उसमें उदारता महत्ता चाहिए, कभी मना नहीं करना, ब्राह्मण कहता ही चाहिए वो चाहिए, नाराज नहीं होना, करना ठीक है, कहते ये करना है ठीक है, ये कर्म लाना पड़े यही करना करना है, कुछ कहते करना आवश्यक है तो ठीक है करना है, कुछ भी हो कुछ कहते करना के लिए प्रारंभ किया गया, बहुत व्यर्थ खर्च होता है होता है, कर्म करते समय थोड़े कुछ उपकरण कुछ लाना है कुछ दक्षिणा देना कुछ करना कहते हैं तो उसको स्वीकार कर करना चाहिए। राजा खुश होकर क्या तथे इतिवाच, अब राजा है ऐसे करते थे कर्म करेंगे और ऐसे ब्राह्मणों को असंतोष नहीं कराएंगे, उपस्थित हो गए वहां यदि अपने असंतोष प्रकार दुख प्रकार करे, इतने मात्र से ब्राह्मण कहेंगे नहीं हम जा रहे, अथवा दुखी हो जाएंगे तो कष्ट होता है, और देते समय अपने दुख से दे तो भी ब्राह्मण देखेंगे दुखी होता है तो भी पाप लगता है, प्रसन्न होकर के श्रद्धा से देना है। राजा का ठीक है, अब सब मिलकर कर्म करते हैं, कर्म करेंगे, किंतु ये जो तीनों को पूछा था उसस्ति ने, अभी एक एक पूछते आपने हमको इसे पूछा था, वो देवता कौन है इसको जानना है। अतः है इनम प्रस्तुत उपसाद प्रस्तुतर या देवता प्रस्ताव मन्वायत्ता ताम चेद विद्वान प्रस्तुष्यति मूर्धा ते विपतिष्यति इति मां भगवान अवोचत कतमा सा देवते इति। पूछने के लिए प्रस्तोता उनके पास गया, अथ एनम उसति के पास प्रस्तोता उपससाद समीप में गया। समीप में जाना मतलब खाली जाकर के समीप नहीं, कहीं वेद में शास्त्र में उपपूर्वक गम धातु प्रयोग करते उपगम उपते यानी उपगति, समीप में जाना कहते शिष्यत्व ने नम्रता के पूर्वक जाना पूछने के लिए, ऐसे समीप में जाना मतलब पास में जाना नम्रता के साथ शास्त्रीय विधि से विद्या प्राप्त करने के लिए। उपपूर्वक गम धातु उपते यानी इसमें आएगा बृहदारण्य उपते यानी, मैं शिष्यत्व ने आपके पास आता हूं गुरु उपशक्ति शब्दातु हुए गमन गुरु के पास जाना, तो ये श्रद्धातु का ससाद लिट में उनके पास शिष्यत्व ने जाकर के, और जैसे उन्होंने पूछा था ये वाक्य को पूरा बोल दिया। आपने पहले हमको इसे बोला था, क्या बोला था प्रस्तोतर, ये प्रस्तोतर या देवता भी ये उसत्य ने कहा था, उसी वाक्य को पूरा बोल दिया था। प्रस्तोतर या देवता प्रस्ताव नायता ताम से अविद्वान प्रस्तुष्यसी मूर्धा से विप्रतिष्यति इति मां भगवान अवचत, ऐसा आपने मुझे कहा था, जो कहा था वाक्य को पूरा बोल दिया। आपने मुझे ऐसे कहा था है प्रस्तोतर, जिस देवता प्रस्ताव में संबद्धी उसको नहीं जानकर यदि मेरे सामने स्तुति करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा, ऐसा आपने मुझे कहा था। अभी मां कथमा सा देवता आई थी, वो देवता कौन है, इतने प्रश्न है, प्रस्ताव संबंधी देवता कौन है ये प्रश्न करने पर उत्तर देते प्राण इति होवाच सर्वाणि हवाइमानि भूतानि प्राणमेवाभि संविशन्ति प्राणम अभ्युज्जिहते सैषा देवता प्रस्ताव मन्नायत्ता ताम चेद विद्वान प्रास्तुष्यो मूर्धाते व्यपतिष्यत तथोक्त समयेति। प्राण इति होवाच उसत ने कहा प्राण ही ये प्रस्ताव भाग संबंधी देवता प्राण ही थे, वो प्राण कौन है, सर्वाणि हवाइमानि भूतानि प्राणमेव अभिसंविशन्ति, ये सारे भूत प्राण में लीन हो जाते हैं, अभिसंविशन्ति प्रलय काल में प्राण में सब लीन हो जाते हैं, जैसे सुषुप्ति अवस्था में प्राण में सब इंद्रिय आदि लीन होते, प्राण चलता है, सबका व्यापार बंद हो जाता है, सैसा देवता सा ऐसा देवता प्रस्ताव मन्नायता प्रस्ताव संबंधी ताम चेत अविद्वान प्रास्तोष्यो, वो नहीं जानकर तुम यदि स्तुति कर लेता, मैंने तुमको कहा था स्तुति करो तो सिर गिर जाएगा, मेरी बात में ध्यान नहीं कर जाती तुम स्तुति कर लेते तुमने तुम कर लेते ना तो तुम्हारा सिर गिर जाता, यदि ऐसे करता तो सिर गिर जाता। अविद्वान प्रास्तोष्य मूर्धाते व्यपतिष्यत लिंग लगा गिर जाता तथोत्व से मया, ऐसे में कहता तुम्हारा सिर गिर जाता गिर जाता, अर्थात तुमने अच्छा किया, मैं कहने के बाद ऊपर तो होकर बैठ गया अच्छा किया, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट होता, वो नहीं क्या ऊपर तो हो गया था, ये कहते थे तुमने साधु कृतम मया निषेध कर्म से ऊपर में हो गया अच्छा किया। प्रस्ताव भक्ति के बाद उद्गाता उद्गीत गान करने वाले, अतः हेन मुद्गातोपस साधु उद्गातर या देवता उद्गीतम मन्वायत्ता ताम चेद विद्वान उद्गाष्यसि मूर्धाते व्यपतिष्यति इति मां भगवान अवचत कतमा सा देवते इति। अतः एनम इस उसस्ति के पास उद्गाता उपससाद उद्गाता उसके पास आया शिष्यत्वेन आकर के कहा, जैसे उन्होंने पहले पूछा था ये वाक्य को कह दिया, उसस्ति ने पहले उद्गाता को बोला था हे उद्गातर या देवता उद्गीत मन्नायता, जिस देवता श्याम के भाग उद्गीत संबंधी है उसको नहीं जानकर जे तुम उद्गान करोगे तो तुम्हारा शेर गिर जाएगा। इति मां भगवान अवचत, ऐसा मुझे भगवान आप पूज्य आपने कहा था, ऐसा मुझे कहा था। सा देवता कतमा, वो देवता कौन है, ये उद्गाता पूछते हैं। महर्षि उसति चक्रायन उत्तर देते हैं, आदित्य इति होवाच। अच्छा ये सर्वाणि हवाईमानि भूतानि आदित्यम उच्चैः संतम गायति गायन्ति शेषा देवत उद्गीतमन्वायत्ता तां चद विद्वान उद्गास्य मूर्धाते व्यपतिष्यत् तथोक्त समये इति। यहां जो प्रस्ताव संबंधी देवता प्राण कहा गया, जिस प्रकार पहले क्या आया था आकाश, आकाश का अर्थ क्या था ब्रह्म, सारे भूत की उत्पत्ति कहा था आकाश से, आकाश आकाशस्तलिंगा तो ब्रह्मसूत्र है। ठीक उसके बाद ब्रह्मसूत्र है अतएव प्राण, प्राण भी ब्रह्म है। यहां जो प्राण कहा, ये प्राण के विषय में ब्रह्मसूत्र में व्यास जी ने सूत्र बनाया, तो ये प्रकरण चल रहा है। प्राण लगने लगता है जैसे सरस्वती में प्राण में सब लीन हो गए, ऐसे प्राण ही सब कुछ श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मसूत्र में व्यास ने बनाया ये जो प्राण कहा गया ये ब्रह्म ही है। अतएव प्राण उसके लिंग है, ज्ञापक शब्द है। सारे भूत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ब्रह्म से ये कहा गया। और यहां प्राण किसको कहा गया, इमानी सर्वाणी है इमानी भूतानी प्राण में अभिसंविशन्ति, प्रलय काल में प्राण में प्रविष्ट होते हैं। फिर जो सृष्टि होती है उसी प्राण से आते हैं। सारे भूत जिसमें लीन होते हैं, जिससे उत्पन्न होते हैं, वही प्राण है। प्रस्ताव भक्ति संबंधी सारे भूत की उत्पत्ति प्राण तो वायु है, आकाश आदि वायु आदि सब की उत्पत्ति प्राण से ऐसा संभव नहीं है, इसलिए यहां प्राण शब्द का था ब्रह्म। उसका ज्ञापक शब्द क्या हुआ, सर्वाणी हव इमानी भूतानी, सारे भूत जिससे उत्पन्न प्राण से लीन होते हैं, प्राण से फिर प्राणम अभ्युज्जीयते, फिर प्राण से निकलते हैं उत्पत्ति काल में, प्राण में प्रविष्ट होते प्रलय काल में, उत्पत्ति काल में प्राण से निकलते हैं, वही प्राण कौन है, ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ही है। तो यहां ब्रह्म सूत्र में आया प्राण शब्द का था ब्रह्म। और आगे जो उद्गाता संबंधी देवता, इसके देवता था आदित्य इति उवाच। सर्वाणि हवाईमानि भूतानि आदित्यम उच्चैः संतम गायन्ति, आदित्य को उद्गीत संबंधी देवता क्यों मानते हैं, उद्गीत गाना करने वाले उद्गीत, सारे भूत आदित्यम उच्चैः संतम गायन्ति, आदित्य उदयन रूप जब आ जाता है उदय हो जाते हैं, उसको सब उसको गान करते हैं स्तुति करते हैं आदित्य भगवान की। उत शब्द दोनों में है, उच्चैः में उद है और उद्गीत में उत है, दोनों में उत शब्द समान होने से ये उद्गीत ये हो गया, सामान्य हो गया, आदित्य हो गया उद्गीत देवता। ताम चेद अविद्वान उद्गासे मूर्धाते व्यपतिष्य तथोक्त समय, और तुमने अच्छा किया मैंने कहने से ऊपर तो हो गया, नहीं तो नहीं यदि तुम नहीं जानकर उद्गान कर लेता तो तुम्हारा सिर गिर जाता मैं कहने पर, अच्छा किया आपने नहीं किया ऊपर तो हो गया, ऐसे मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसे कह दिया तो चुप हो गया, यदि थोड़ा अवमान करे कुछ करे तो कभी कभी दृष्ट नहीं हो तो यहां तो दृष्ट मत सिर गिर जाना, दृष्ट नहीं होने पर अदृष्ट पाप होता है। कोई बड़े कुछ कहते हैं उसके अवमान करेंगे, नहीं क्या क्या जानते हम इसे करेंगे, ऐसे कुछ करते तो उल्लंघन करते तो बड़ों की बात का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। बड़े हो किसी प्रकार सम्मान है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ को सम्मान पूजा करनी चाहिए, और छोटे भी हो भी यदि यथार्थ कहता है तो भी ग्राह्य है, ये नहीं कि हमसे छोटा है ये किसी की बात हम क्यों सुनेंगे, छोटे होने पर यदि यथार्थ कहता है उसको भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा अभिमान के द्वारा हम बड़े हम भू जानते करके इसे करके उसकी उपेक्षा कर देना वो भी ठीक नहीं है, अर्थात हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक उचित मार्ग में चलना, सन्मार्ग में चलना, सबको सम्मान करना, बड़े की गई बात को ग्रहण करना, उनको कष्ट नहीं देना, और छोटे भी कुछ कहता है उसको भी थोड़ा सुने, बिल्कुल उपेक्षा नहीं करे, जितने संभव होता है हो सकता है यथार्थ है तो ग्रहण करना चाहिए, छोटे हो बड़े हो कोई हो। ऐसे जो भावना करके हमेशा ग्रहण करता है उसको परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा करने से कभी न कभी किसी प्रकार परमात्मा साक्षात आकर के दर्शन दे करके देना उपदेश करना ये तो बड़ा कठिन है, किंतु किसी के द्वारा उपदेश करा देते हैं। आप यदि ग्रहण करने की तैयारी है उसी समय कोई आपको कोई कह देगा और जो ग्रहण करने वाला उसको ग्रहण कर लेता है। ऐसे होता है, ऐसे साधक अपने साधक ऐसे बताते हैं, ऐसे देखते समय पर उपदेश मिल जाता है। जब धर्म संकट आ जाता है क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई साधु घर छोड़कर आए साधु बनने के लिए, आनंद था हिमालय में, वहां पहले वाराणसी में गया अयोध्या में गया, वहां कोई बाबा बोला कहां गुरु को ढूंढते हो, गुरु तो अंदर है। वो तो साधु बनने के लिए आया था, गुरु अनुसरण कर रहा था, वो सच्चाई तो बहुत अच्छी बात बोल रहे बाबा, गुरु अंदर है तो सुन के बहुत ही तो कैसे क्या मिलेगा। उसको लगता था कि जब उपदेश जो कुछ कोई कहता है ये परमात्मा ही करते कराते हैं, ये भावना करेगा कि परमात्मा ही ऐसा आता है कि योग्य शिष्य को योग्य गुरु प्राप्त हो जाते हैं, परमात्मा ही प्राप्त कराते हैं, ऐसे एक शास्त्र प्रसिद्ध वास्तव्य है। उसके मन में आया यदि कोई इसे कहते हैं तो जानकारी है तो अच्छा है, फिर मैं तुमको ले लूंगा, बड़े स्थान में रहो, बहुत अच्छे संत है। फिर उसके मन में आया अच्छा है, उनको गुरु माने यही रहेंगे, हिमालय क्या जाएंगे अयोध्या में रह जाएंगे। फिर उसके बाद बताया देखो यहां रहो ना, सारा जीवन तुमको भोजन में कोई कमती नहीं है, खाने पीने में कोई कमती नहीं। इतने जब कह दिया फिर वो समझ लिया, पहले तो आध्यात्मिक उपदेश करने के लिए गुरु चाहता था। उन्होंने कहा यदि कहता बहुत अच्छे महापुरुष है तुमको साधन बताएंगे साधन करो परमात्मा दर्शन, तो वहां उनको गुरु मान लेता था। और ये जो कह दिया तुम यहां जीवन भर रहो भोजन के लिए कोई कमती नहीं, वो हो गया अरे ये भोजन के लिए कहता है, जो घर छोड़कर आया परमात्मा प्राप्त करने के लिए उसको बता देता है। कुछ लोग ऐसे होते बच्चे घर छोड़ आ गए डरते कहां जाए कहां खाएंगे कहां रहेंगे, तो यहां रहो खाने पीने की कोई कमती नहीं सब बढ़िया है, और फिर उसको लेकर साधु बना देते खिलाने पिलाने रखते वो फंस जाता है। ये किन्तु जब समझ लिया परमात्मा ही कहते कराते उसके मन में आ गया था, तो हिमालय क्यों जाएंगे, यहां तो राम जन्मभूमि ये भी कोई कहते हैं तो अच्छा साधु है चलो यहां गुरु बनाकर यहां रहेंगे। किंतु जब कह दिया ही परमात्मा उसको करा दिया यहां रहो तो खाने पीने को कोई कमती नहीं, उसको कुछ नहीं कहा समझ लिया ये खाने पीने के जो कह दिया इतने मात्र समझो यहां नहीं रहना है, दूसरे समय फिर दूसरे काल को मिलेंगे करके काल को भी छोड़कर चला गया ऋषिकेश चला गया। तो ऐसे होता है जो चाहता है ऐसे उपदेश प्राप्त हो जाता है, ऐसे जो सोचता है परमात्मा ही करते कराते हैं और परमात्मा ही रक्षा करेंगे परमात्मा के भरोसे में रहता है, तो दूसरे लोग ठगना चाहने पर भी परमात्मा उसको किसी प्रकार रक्षा करते हैं। नहीं तो साधक को लेकर के उचित स्थान पर कौन पहुंचाएगा, किस प्रकार पहुंचता है उसके पास कैसे पहुंचता है कैसे पहुंचेगा कुछ मालूम नहीं, किसको मालूम कहां के कौन महापुरुष कहां जाएगा। अयोग्य जो मुमुक्ष साधक है उसको योग्य गुरु प्राप्त होते ही है। भागवत में आज रखे हुए कथा सुखदेव जी जब परीक्षित बोलते प्रश्न करते हैं तो सब विद्वान लोग बैठे तो मरने का समय उपस्थित हो गया तो क्या करना है, सब बैठे तो उस समय सुखदेव कहां से आकर पहुंच गए। जब इस स्थिति है मरने का समय हो गया परीक्षित राजा पूछ रहे तक्षक सर्वप्रथम सन किया बड़े बड़े विद्वान है पूछ रहे उसी समय किस प्रकार सुखदेव आकर हुए अवधूत विषय में आकर पहुंचे सब देखे पाए फिर उनसे पूछा ओके। गुरु नहीं मिलते ही बात नहीं, गुरु तो है, शिष्य में योग्यता हो शिष्य उस प्रकार में मुमुक्ष तो पात्रता हो तो परमात्मा है उसको गुरु पहुंचा देते देते। कभी निर्बीज नहीं होता है, ज्ञानी गुरु का अभाव नहीं होता है, बहुत तो नहीं होते हैं और उनको पहचाना में सरल नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से प्राप्त होते परमात्मा ही प्राप्त कराते हैं। अपने में योग्यता अधिकार है मुमुक्षुत्व है तो परमात्मा ही प्राप्त कराते ही है। इसी प्रकार हमेशा ही ध्यान रखे सम्मान करे महत्व अवमाना नहीं करे, तो ये इसलिए हमेशा ही ध्यान रखने से परमात्मा इसकी रक्षा करते साधक की रक्षा परमात्मा ही करते। तो संसार में बहुत चोर डाकू विभिन्न मार्ग में चलने वाले रास्ता बहुत बताने वाले कि स्वयं कुछ साधन भजन नहीं करके लोगों को बताने वाले बहुत हो जाते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते दूसरे को उपदेश करना, जितने लोग उपदेश करते कथा प्रवचन करते जितने भक्ति के लिए कहते उनमें भक्ति करने वाले कम होते हैं, भक्ति करने स्वयं करने वाले है इतने आडंबर नहीं कर पाएगा। भक्ति करने वाले यदि कोई करता है तो अच्छा है, स्वयं नहीं करके उपदेश कर गया तो क्या करेगा, तो फिर अब कौन साधक सामान्य क्या करेगा, कहीं ना कहीं बह जाएगा कि कौन रक्षा करने वाले रक्षा करते। इसलिए यहां वो कहा तुमने ऐसा नहीं किया तो अच्छा हुआ। उसके बाद प्रत्युहर्ता भी जाकर पूछते हैं, अत एनम प्रत्युहर्तोपसाद प्रत्युहर्तर या देवता प्रत्याहार मन्नायता तान चेत विद्वान प्रतिहरिष्यसि मूर्धाते विपतिष्यति इति मां भगवान अवोचत कतमा सा देवते इति। अतः एनम उसत्ति को प्रत्यहर्ता प्रत्याहार भाव के स्वामी के प्रत्याहार भाव को गान करने वाले समीप में गया, बोला जैसे उसत्ति ने पहले पूछा था इसे ही वाक्य बोल दिया, हे प्रत्यहर्तर जो देवता प्रत्याहार संबंधी है उनको नहीं जान करके जब तुम प्रत्याहार गान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। इति मां भगवान अवचत ऐसा भगवान पूज्य आपने मुझे कहा था, सा देवता कथम है वो देवता कौन है। उसत्य उत्तर देते अन्नमिति होवाच सर्वाणि हवाईमानि भूतानि अन्नमेव प्रत्यहरम मानानि जीवन्ति। शेषा देवता प्रतिहार मन्नायत्ता तांच दविद्वान प्रतिहरिष्यो मूर्धाते व्यपतिष्य ततुक्त समय इति ततुक्त समय इति। अन्न इति ह उवाच काय अन्न देवता है प्रतिहार संबंधी सारे भूत ये अन्नम एव प्रतिहर मानानि जीवन्ति। सब ओर से अन्न लेकर के अन्न ग्रहण करके ही जीवित रहते हैं, अन्न ही सबका कारण जीवन लाने के लिए। वही देवता प्रत्याहार संबंधी है, उसी देवता को नहीं जान करके मैंने मना किया, मना करने के बाद भी यदि तुम प्रत्याहार बोल देता तो तुम्हारा सिर गिर जाता, ऐसे तथोक्त समय ऐसा मैं कहने के बाद गिर जाता तथोक्त समय। खाली नहीं जान करके गान करेगा तो सिर गिर जाएगा, नहीं जानकर गान करता है और कोई सावधान कराता है नहीं जानकर गान करो तो सिर गिर जाएगा, ऐसे कहने के बाद फिर यदि उल्लंघन करता है तो सिर गिर जाएगा। उपासना करके कर्म करना चाहिए उसे अधिक फल होता है, उपासना नहीं करने वाले भी कर्म कर सकता है, किंतु यदि कोई वो जानने वाला उपासक है सब जानते विद्वान उनके सामने करता है तो उनकी अनुमति लेकर करे, और सतर्क करने के बाद उल्लंघन करे तो अनिष्ट होता है। अभी यहां प्रारंभ हुआ था उद्गित उपासना का आरंभ हुआ था, प्रसंगतः उद्गित के पहले प्रस्ताव और बाद में प्रत्याहार ये दो भाग तत्संबंधी तो उपासना कही गई। अब इसमें आया उसक्ति चक्रायण अन्न की प्राप्ति नहीं होने से कितने दुर्गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए यहां कहते हैं अन्न अधिक होने के लिए कुछ कर्म है उपासना है ये बताते हैं। अथातः सौवो उद्गीत स्तब्धवको दालभ्यो ग्लावो वा मैत्रेय स्वाध्याय मुद्वराज सौव उद्गीत। अभी उद्गीत कहेंगे सौव स्वान कुत्ते संबंधी, सौव एक कुत्ता बनकर के कुकुर रूप धारण करके देवता लोग को उपदेश करते हैं, इसी प्रकार उपदेश परमात्मा करते हैं, किसी प्रकार उपदेश करते हैं। देखो कुत्ते बनकर के उपदेश करेंगे तो सौभ उनके नाम हो गया, तथा बको दालभ्य नाम है बक दलभ का पुत्र उनसे दालभ्य बन गया, और मित्रा का पुत्र उनसे मैत्री हो गया, ग्लावो नाम है एक ही व्यक्ति है इसे दो नाम से प्रसिद्ध है। स्वाध्याय उद्वबराज स्वाध्याय करने के लिए घर छोड़ करके उद्वबराज ग्राम के बाहर जाकर के कोई अरण्य आदि स्थान में एकांत स्थान में बैठ करके स्वाध्याय का अभ्यास किया, जैसे कोई पाठ पारायण गीता पाठ करना है घर में विघ्न होता है उसमें अटक गया, गया कहीं एक स्थान में मंदिर कोई अथवा अलग स्थान में जाकर एकांत बैठ कर पाठ किया, वहां ऐसे करते गंगा तट में जाकर बैठ करके पाठ करते जप करते घर में करते मंदिर में करते कुछ ऐसे स्थान गंगा स्थान एकांत में कहीं गए बैठ गए वहां पाठ करते किसी सब स्थान में करते हैं। तो स्वाध्याय के लिए जाकर के पाठ किया, ग्राम से बाहर जाकर के एकाध स्थान बैठ करके वो पाठ किया। वो ऋषि थे तो वो पालन करते समय उसका उद्देश्य था आगे उसको अन्न किस प्रकार प्राप्त होगा, ये उपदेश मिला। उसके मन में कामना थी अन्न कैसे अधिक प्राप्त हो। कर्म सारे सब पदार्थ की प्राप्ति कर्म उपासना मूल कारण होती है और सबके लिए शास्त्र में विहित है। तो अन्न के अभाव से उसक्ति को कैसे दुरावस्था को मिलते, इसलिए प्रसंगत श्रुति में कहते अन्न प्राप्ति के लिए भी कुछ कर्म उपासना है। तस्मे स्वा श्वेत प्रादुर्बभूव तमन्य श्वान उपसमेतुचुर अन्न नो भगवान आगाय असनायाम वा इति। जब दाल्भ्य बक जाकर के स्वाध्याय करता था उसके सामने तस्मय उसके लिए उसको ऊपर स्वाध्याय के कारण जाकर पहुंचते ही नहीं, वो जाकर स्वाध्याय अभ्यास करता है। उसे स्वाध्याय से प्रसन्न हो गए देवता लोग अथवा ऋषि। कोई सत्कर्म करता है तो देवता लोग देखते तो प्रसन्न होते हैं। ये ऋषि लोग भी इस प्रकार के है, सूक्ष्म रूप से दिखते नहीं, ऐसे कोई करता है तो प्रसन्न होते हैं। कोई योग आदि अभ्यास करता है, योग को ठीक बताने वाले गुरु कम है। जो योग के गुरु सिखाने वाले तो बहुत ही, वास्तव योग में अनुष्ठान करके आगे पहुंचने वाले कम होते हैं। कोई यदि करता है उसको उपदेश देने के लिए अभी भी कहीं कहीं ऐसे असह्य रूप से कोई आ करके उनको सामने प्रकट होकर कोई सामने उपदेश करते हैं तो किस प्रकार क्या करना। फिर बाद में अन्य कोई नहीं देखे तो उनको आ जाते कमरा के पास आकर उपदेश कर चले जाते हैं। ऐसे कहीं के महापुरुष है सूक्ष्म रूप से है। तो ये देवता लोग ऋषि लोग प्रसन्न होते हैं। देवता लोग को कृपा करने के लिए जो कृपा करना चाहते हैं तो इसे कुछ रूप धारण करके क्या हुआ, कुत्ते बन करके, कुत्ते रूप धारण करके सफेद सफेद कुत्ते सुवा श्वेत सफेद बन वाले प्रादुर्भव प्रकट हो गया एक कुत्ता। और तम अन्य श्वान उपसमेत ऊंचो और अन्य सब कुत्ते उसके पास आकर के कहा अन्नम न भगवान आगाय तू, हे भगवान हमारे लिए अन्न संपादन कीजिए, आगान करके अन्न हमको दीजिए। असनायाम वही हम भूखे हैं, ये स्वाध्याय कर रहे हैं, मन में कामना है अन्न कैसे प्राप्त करना। और स्वाध्याय में इतने तत्पर होकर करते तो देवता लोग प्रसन्न हो गए, देवता अथवा ऋषि प्रसन्न होकर सामने के कुत्ता प्रकट हो गया और कुत्ता आकर बोलते हैं हमको अन्न दीजिए हम भूखे हैं। ये जो कहा तो तान होवाच ये वमा प्रातर उपसमीयात इति तद्धवक दाल्भ्योल ग्लावो वा मैत्र प्रतिपालयांचकार। जो पहले कुत्ता मुख्य था जिसके चारों तरफ अन्य कुत्ते इकट्ठे होकर के मांगे हमको अन्न दीजिए, आगान कर अन्न संपादन कीजिए, वो कहा काल सुबह इस समय मेरे पास आना। अभी बोले प्रकट होकर काल प्रातर स्व यही वो यही प्रातर उपसमय आताम यही उपस्थित हो जाओ, इतने कह दिया तो चले गई। फिर बक देखा इसके मन में तो अन्य की इच्छा थी, सामने इसे प्रकट होकर हुआ और वो ठीक उस प्रातः उसी समय आकर के उपस्थित हो गया, प्रतीक्षा करके कब कोई आएगा उपदेश करेंगे। यही उपदेश वो भी समझ ले, सामान्य नहीं थे ऋषि, स्वाध्याय करते प्रसन्न होते थे देवता, वो समझ ले कोई परमात्मा की कृपा से कोई हमको उपदेश करेंगे। कुत्ते बल के ऐसे करते तो सुबह आकर के पहुंच गए, आकर के क्योंकि तो क्षुधा इनको भी अन्न चाहिए तो अनुग्रह करने के लिए कोई आकर के कुत्ते बन करके कहते हैं तो समझ लिया एक परमात्मा की कृपा हुई है। ये वो अन्न के लिए कहते और क्या सुबह काल आसना इसी समय, यहां इसी समय नहीं इसी स्थल पर सुबह प्रातः आना। तो जब बोले तो उस प्रातः काल नहीं था, वो तो प्रातः काल आना। तो दूसरे दिन बक जाकर के पहले उपस्थित होकर के वहां रहा, उनकी प्रतीक्षा करके अपने ध्यान करते बैठा। ते हयथे वेदम बहिष्पवमान स्तोष्य माना सरब्धा सरपंती आ सस्य पुस्ते समुपविश्य हेन चक्रु। सुबह से कुत्ते प्रकट हो गए, आकर कहते यथा एवं बहिष्पवमान न, कर्म करते समय कभी कभी ये बहिष्पमान स्तोत्र पाठ करते हुए, बहिष्पमान का स्तोत्र का नाम है, उद्गात पुरुष क्या होते, चलते एक पीछे दूसरे, ये इसे करेंगे दूसरे व्यक्ति उसके कपड़े पीछे हाथ रखेगा, मतलब दोनों को लग पकड़ करके आगे चलते पीछे के साथ संबंध होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, इसे इसके वस्त्र जहां यहां रहता है कमर में ऐसे थोड़ा हाथ लगा देते हैं, हाथ लगे चलते, ये कभी हाथ एक हाथ मिलाते नहीं तो कब ऐसे लगा दिया, जैसे पुनाहुति देते समय एक पुनाहुति देने के लिए आहुति पकड़ते और सब लोग हाथ ऐसे स्पर्श करते, उनको कोई स्पर्श, उनको कोई स्पर्श नहीं किया, बिजली के जैसे संबंध धागा भी रखते हैं, ये चलते समय इस प्रकार दूसरे के कच्छ कहते वस्त्र में कमर में ऐसे हाथ रख करके चलते हैं, किसी कर्म में तो ऐसा आता है कभी छोड़ देता है तो उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, वो जिस प्रकार इसे करके चलते हैं कुत्ते भी क्या करेंगे, उनके कमरे में वस्त्र कहाँ है, हाथ कहाँ है पकड़ने के लिए, मुख से उसके पूछ को पकड़ करके आगे वाले को पूछ, ये कुत्ता मुख से पकड़ा, इसके पूछ दूसरे मुख से पकड़ा, अपने को वस्त्र पहनते तो कमर में है उसमें हाथ रख देंगे, और वो क्या रखेगा वस्त्र कहाँ, हाथ रखेगा कहाँ, तो उसके पूछ को मुख से पकड़ा, ये पूछ मुख ऐसे करके सब चलने लगे, स्तोष्य माना सर्वधा सरपंती संबद्ध होकर के चलते एवं आ सश्रुभु, ऐसे उसके पास गए जाकर के इसे परिक्रमा के परस्पर संबंध होकर के भ्रमण किया परिक्रमा की, उसके बाद यह समुपविश्य बैठ करके उपयुक्त बैठ करके हिंचक्रुहु हिंकार किया, ये शाम का प्रथम भाग है हिंकार, हिंकार भाग हिंकार किया जोर से हिंकार करे, आगे क्या कहते, ओ मदामो पिबामो देवो वरुणः प्रजापतिः सविता नमिहारतन्नपते नमिहारारोमिति, ओम अदाम, ये ओम अदाम है, ओ लंबा होकर के आगे ओम अदा, ओम अदाम आगे, ओम पिबाम देवो वरुणः प्रजापतिः सविता अन्नम इह आहरत अन्नपते अन्नम इह आहर आहर, ओम ये शाम इसे लंबा कर ज्ञान करते शब्द इस प्रकार अलग अलग हुआ, ओम अदाम ओम पिबाम, हम पान करते हैं दाप लवण छेदन करते ग्रहण करते हैं पिबाम, ओम देवो देव उनको कहते सूर्य भगवान को हे देव, वरुण भी उनको कहते वर्षा करते जगत में वर्षा करने से उनका नाम वरुण हो गया, सूर्य भगवान को प्रजापति भी कहते हैं क्योंकि सब प्रजा का पालन करने वाले सूर्य, सूर्य उदय अस्त के द्वारा वर्षा करके पालन करते हैं, और सविता भी कहते सबका जनक होते दिन रात करके सविता, इनके नाम लेकर के आदित्य को कहते हे आदित्य अन्नम अस्मभ्यम आहरत हमारे लिए अन्न प्राप्त कराओ, यही कहते हैं अन्नम यह आहरत हमारे लिए अन्न प्राप्त कराइए, हे अन्नपति अन्नम यह आहरत हमको अन्न दीजिए, उनको अन्नपति का संबोधन करते हैं हमारे लिए अन्नम आहरत अन्न प्राप्त कराओ हमको अन्न प्राप्त कराओ, यही कहते हैं, इसलिए इतने हुआ जिस प्रकार कर्म करके ये हिंकार करते हैं तो ऐसे हिंकार करके पाठ करने पर ऐसे पाठ करने पर उपासना करने से अन्न प्राप्त होगा करके उपदेश किया, साम के भाग का उपासना करने के लिए साम एव संबंध कहा, साम अवयव में कुछ अक्षर होता है, एक कहते स्तोभ, सूत्र में अनर्थक शब्द नहीं होना चाहिए, सूत्र का लक्षण में अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविद विदुः, सूत्र में स्तोभ अनर्थक शब्द नहीं होना चाहिए, तो वेद में कहीं कहीं इसे स्तोभ है पाठ करने के लिए, जैसे स्वाहा स्वधा बसट हुम्फट हाऊ आ ऐसे ऐसे कुछ शब्द है, इसको कहते स्तोभ। तो साम गान करते समय ऐसे बीच बीच में कोई शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं किंतु ऐसे पाठ करना है, इसको कहते स्तोभ। स्तोभ मतलब ऐसे शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं किंतु पाठ करना, भीत शास्त्र में जैसे कहा ऐसे पाठ करना। अभी जो स्तोभ अक्षर है इसी के संबंधी उपासना है, अक्षर इसमें है उत्तर संबंधी उपासना है कहते हैं। अयम बावलोक हाउकारो वायुर हाईकार चंद्रमा अथकार आत्मी हकारो अग्निरीकार। अयम बावलोको यह जो लोक है पृथ्वी है यह हाउकार, हाउकार के स्तोभ है। शाम पाठ करते समय कहा आता हाऊ हाऊ हा हाऊ हा और उ, जैसे अकार कहते अकार इकार, अ के आगे कार जोड़ दो कहेंगे अकार, स के आगे का जोड़ दो सकार, उ कह करे कार जो तो उकार हुआ, वर्णात कार वर्ण से कार होकर के बनता है। हाऊ शब्द के लिए कार जोड़ करके हाऊ कार अर्थात हाऊ वर्ण है, हाऊ ये तो भय अनर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं किंतु साम गान करते समय कहीं से आया तो हाऊ ऐसे गान करना है, इसको कहते स्तोभ। तो ये जो हाऊ नाम का स्तोभ है ये स्तोभ में लोक यह पृथ्वी दृष्टि करे, अयम लोक हाउकार स्तोभ में ये लोक दृष्टि करके उपासना करना, जैसे हाउकार अयम लोक हुआ, दूसरा वायुर हाईकार दूसरा स्तोभ हो गया हा ई, पहले हा उ था द्वितीय हो गया हा ई, हा ई एक स्तोभ है अनर्थक शब्द किंतु साम गान करते समय इसे कहीं आया, वामदेव ने के साम में हाई आया, रथंतर नाम के साम में हा उ ऐसा है, किसी साम में कहा एक साम का नाम रथंतर उसमें आता है हा उ, एक साम का नाम वामदेव्य साम उसमें आता है हाई, तो हाई नामक जो स्तोभ है शब्द है उसमें वायु भावना करके वायु दृष्टि करे उपासना करे, जैसे शालग्राम में विष्णु भावना करके विष्णु की उपासना, इसी प्रकार स्तोभ गान करते समय हाई आया वो हाई शब्द में वायु भावना करे वायु देवता, इसी प्रकार शाम गान करते समय बीच में क्या अनर्थक शब्द आया, अनर्थ का था उसका शब्द का अर्थ नहीं, अनर्थ का था व्यर्थ नहीं, उसका प्रयोजन है उसका चिंतन उपासना करना है, ऐसे लोक बुद्धि करके परमात्म बुद्धि करके चिंतन करना। चंद्रमा अथकार एक अथ सदा अथ अथ अथा तो ब्रह्म जी अथ आया, अथ का अर्थ भी है कहें कि अथ ऐसा है कोई अर्थ नहीं ऐसे स्तोभ है, उसमें चंद्र दृष्टि करके उपासना करें। आत्मा इहकार का इह इह सदा इह यह नामक स्तोभ है, उसमें आत्मा आत्म बुद्धि से चिंतन करें। आगे अग्निर ईकार ई ऐसे कहीं स्तोभ आए खाली ई, उसका कोई अर्थ नहीं बीच में कहा आई लंबा करना के बुनना है, तो उसमें अग्नि बुद्धि करके उपासना करें। ये सब क्या उपासना कहते हैं, शाम गान करते समय कुछ बीच में कहीं कहीं स्तोभ शब्द आता है उसमें ऐसे बुद्धि करके उसका चिंतन उपासना करें। आदित्य उकारो निहव एकारो विश्व देवा अहोकार प्रजापतिरहिंकार प्राण स्वरोन्न या वाग विराट, एक ऊकार का ही ऊ ऐसे आएगा, ऊ एक स्तोभ है उसमें आदित्य बुद्धि कर आदित्य है, और एकार ए ऐसे आता है ए तो निहव निहव नाम के दृष्टि करे आह्वान के लिए, निहव आह्वान तो वे आह्वान करने के लिए निहव दृष्टि। विश्व देवा औहिकार औ हो औ हो ऐसे शाम गान करते समय कहीं से शब्द आता है औ हो औ हो को कार जोड़ करके औ हो कार का गान करते समय उसको बोलना पड़ता है प्रेम से औ हो स्पष्ट उच्चारण करके तो उसमें विश्व देवा सारे देवता की दृष्टि करें। अब क्या हिंग आया, हिंग हिंग आ गया तो इसको कहते हिंकार। जो हिंकार साम भाग हिंकार एक स्तोभ है हिंग, जैसे कोई मंत्र बीज में आता है हिंग क्लिंग आदि सब आता है, हिंग शब्द आ गया सामे, उसको इसमें प्रजापति बुद्धि करें। और स्वर आया, स्वर शब्द है उनका कोई, उसमें प्राण बुद्धि करें। और एक या कहीं या शब्द का कोई अर्थ अन्यत्र है, किंतु सामे में कहीं या आ गया अनर्थक शब्द, उसमें अन्न वृद्धि करें। वाक विराट, वाक वाक शब्द वाग इंद्र वाणी भी है, किंतु सामे में कहें कि वाग शब्द आया इसका कोई अर्थ नहीं, तो उसमें विराट वृद्धि करे। हिंकार में जैसे प्रजापति बुद्धि, वाक में विराट बुद्धि करे। वैराज्य सामे में स्तोभ होता है वाक, अनिरुक्त त्रयोदश स्तोभ संचरो हुंकार, इसमें बार होगी स्तोभ गिनते करना। तो पहला क्या है हाउ, दूसरा हो गया हाई, तृतीय हो गया अथ, चतुर्थ हो गया यह, और पंचवा ई, षष्ठ हो गया ऊ, ए सप्तम औ हो ई अष्टम हुआ, नवम हो गया हिंग, दसवा स्वर या रिवाक, कितने हो गए बारह। अभी उसके बाद क्या आएगा अनिरुक्त त्रयोदश स्तोभ, तेरवा जो त्रयोदश स्तोभ है अनिरुक्त, वो निर्वचन ठीक नहीं होता है, विकल्प नहीं हो पाता है, उसको कहते संचर, अव्यक्त है अस्पष्ट है, अस्पष्ट होने से उसका नाम अनिरुक्त का, और संचर है उसका विकल्प मान स्वरूप होता है, कभी कैसे विचार होता है। वो कहा है हूं हूं हूं, एक गुण होता है वो अलग है, ये हूं सब उपासना का लाभ है। ये जो उपासना कहा गया शाम में, उसको देखकर उसमें इसी बुद्धि से उपासना करें। शाम के अवयव की उपासना करते समय एक एक अवयव उपासना करें, सब उपासना का तो फल है शाम साहित्य सालोकता की प्राप्ति है, और सर्वत्र उपासना का ये फल है अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन। सब उपासना, ये उपासना का फल अभी कहेंगे, इसमें श्रुति में उपासना का फल है, जहां उपासना कर्म विधान करते वहां फल भी कहते हैं, कहीं कहीं फल कहते गौण फल, और मुख्य फल कुछ अलग है। मुख्य फल है उसके साहिज्य को प्राप्त करना, हिरण्यगर्भ जैसे हिरण्यगर्भ प्राण दृष्टि करते हैं, प्रजापति दृष्टि करते हैं, जैसे विष्णु बुद्धि सालग्राम उपासना करते हैं तो विष्णु भगवान की प्राप्ति उनका संतोष, इसी प्रकार प्रजापतित्व की प्राप्ति आदि है, आदित्य की प्राप्ति आदि, आदित्य की आदित्य दृष्टि से ये प्रतीक उपासना हो गया। प्रतीक को रहकर के हम परमात्मा बुद्धि करते हैं, जैसे शालग्राम में विष्णु बुद्धि करते हैं, जैसे आ ऊ इस स्तोभ शब्द में, इस ओम शब्द में ब्रह्म बुद्धि, इसी प्रकार साम वेद वेद में साम है, उसमें एक एक शब्द आया, उसी शब्द में किस किस देवता का, विश्व देवता का, आदित्य का, वायु देवता का, ऐसे चिंतन करना, ये प्रतीक उपासना हुआ, वो देवता का संतोष फल होगा। और गौण फल भी अभी अभी कहेंगे, फल ये भी फल कहेंगे, और देवता का संतोष, और निष्काम करेंगे तो सब उपासना का फल ज्ञान, ये सर्वत्र अभी यहां फल कहते हैं। दुग्धे अस्मै वाक् दोहं यो वाचो दुहन्न वानन्नादो भवति, एतमेव स्थानाम उपनिषदो वेदोपनिषदो वेदेति, ये फल कहते। दुग्धे अस्मै वाक्, ये वाग उसको उपासक को फल देता है, क्या है फल, दोहम धोमत सार वाणी का, यो वाचो दुह वाक जो सार, वाक का सार कहते कहते अंत में साम हुआ, साम का भी सब सार है, उससे साहिज्य सालोकता की प्राप्ति, और ये फल है अन्नवान अन्नाद भवति एवं अन्नवान, उसके पास बहुत अन्न होगा जिससे बहुत को अन्नदान कर सकता है, ये भी पुण्य का फल है। अन्नवान प्रभु तो अन्न बहुत अन्न होगा जिससे अन्नदान कर सकता है, और अन्नाद दीप्त अग्नि, अग्नि दीप्त होगा तो जो खाएगा पसन्न हो जाएगा सत्य रहेगा, ये अवान्तर फल, ये मुख्य फल नहीं, ये तो अवान्तर दृष्ट फल सामान्य है, और देवताओं का संतोष, जिस देवता दृष्टि से उपासना करेंगे, आप शालग्राम में करो, मूर्ति में करो, फटो में करो, जिस देवता की दृष्टि से करते हैं वो देवता प्रसन्न होते हैं। शालग्राम में तो करना अच्छा होता है, शालग्राम करने के लिए कुछ विधि निषेध भी है, कोई स्पर्श करे नहीं करे, तो फटो में रखते, मूर्ति रखते, चित्र करते, फिर मन में चिंतन करते, ये सब प्रतीक उपासना। जो मूर्ति है, मंदिर में मूर्ति है, फोटो चित्र करके उपासना करते हैं, ये प्रतीक उपासना हुआ। ओंकार की प्रतीक उपासना, ओम उसे ब्रह्म दृष्टि करके उपासना। इसी प्रकार शाम के अवयव जो तोप हुआ बीच बीच में, उसी शब्द में परमात्मा बुद्धि, आदित्य बुद्धि, वायु बुद्धि करके उपासना। और सामान्य फल हो गया सार सामना के जो सायुज्य सालोकता प्राप्ति, अन्नवान होता है, दीप्ताग्नि होता है, ये सब अवान्तर फल हुआ। और मुख्य फल है तत्त देवता का संतोष। देवताओं का संतोष होने पर अध्यात्म मार्ग में प्रगति होती है। और जो इच्छा करता है, फल चाहता है, उसे देवलोक में जाता है, देवत्व की प्राप्ति होती है, ये सब फल है। किंतु मुख्य फल है सारे उपासना कर्म का निष्काम होकर करे तो परमात्मा साक्षात्कार के। इसलिए ये सब उपासना उपनिषद ब्रह्म विद्या के साथ देते हैं। ब्रह्म विद्या के साथ जो उपासना, उनका मुख्य उद्देश्य ब्रह्म विद्या के लिए अंतकरण की शुद्धि। जितने उपासना अंतकरण की शुद्धि लोक में प्रसिद्ध है, वो स्मार्त उपासना स्मृति विहित, और ये उपासना है सौत श्रुति विहित। लोक प्रसिद्ध नहीं, क्योंकि वेद अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, जिसका श्रवण नहीं किया मालूम नहीं। हाउ हाई आदि स्तोभ है, शाम में कहा है, शाम गान करते समय केवल इतने समझ करके, शाम में एक शब्द आया हाई हाउ ए अथ ई, जिस प्रकार ओम ऐसे शब्द में पर ब्रह्म बुद्धि प्राण दृष्टा उपासना पहला आया, उद्गीत उपासना। इसी प्रकार ये एक एक शब्द लेकर के उसमें उसको देवता का चिंतन, किस शब्द में किस देवता का ध्यान। जैसे प्रतीक उपासना करते, ऐसे मनो भी एक प्रतीक होता, मनो ब्रह्म इतुपासित। वेद में प्रतीक उपासना भी है, जो लोग मूर्ति पूजा खंडन करते हैं कहते वेद में नहीं है, वो ठीक नहीं जानते है। मूर्ति पूजा है प्रतीक उपासना, मूर्ति नाम से नहीं। मूर्ति पूजा जो मूर्ति की पूजा हम नहीं करते, मूर्ति के प्रतीक रह करके परमात्मा बुद्धि से उपासना करते हैं। शालग्राम रह करके उसे विष्णु बुद्धि करके उपासना करते हैं। इसको कोई कहे ये पत्थर की पूजा, वेद में नहीं। अब पत्थर की पूजा वेद में कहीं क्या आएगा, ये भी पत्थर की पूजा नहीं है। शालग्राम पत्थर है ठीक है पासा ना, किन्तु सामान्य पत्थर और शालग्राम पत्थर में भेद है। शालग्राम देखो कैसे बड़े बड़े पत्थर तोड़ते हैं, देखे हम गंडी हाँ, नदी में दामोदर कुंड है ऊपर, वो पत्थरों से आता है, पत्थर जो पत्थर गोल गोल रहता है, उसे तिब्बत तेल को तोड़ देते हैं, अंदर इसे गोल रहना चाहिए, तोड़ते हैं, कहीं तोड़ने पर बीच में सुवर्ण सोना निकलता है, ये तोड़ते तोड़ा देखा तोड़ में थोड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा तो निकाल लेते हैं, तो उसमें जो बना हुआ किस प्रकार पत्थर में बना हुआ, वो कहते कोई कीट काटता है, कीट अंदर कहां काटने वाला कहां, किन्तु कितने सुंदर बना हुआ, कितने चक्र से बना, उसमें फिर बहुत प्रकार है। वो जो शालग्राम है सब देवताओं के नाम पर अलग अलग शालग्राम है, कहीं नृसिंह शालग्राम नरसिंह भगवान, कोई गणेश, कहीं शिव, किसके शालग्राम में शिवलिंग है। एक ब्रह्मचारी महाराज जी के साथ आते, हमारे साथ ही पहले आए थे, उनके पास था शालग्राम के अंदर शिवलिंग, उसकी उपासना वो करते थे। है शालग्राम बड़े, वो नेपाल दार्जिलिंग नेपाल शरीर है, तो इतने बड़े शालग्राम बीच में शिवलिंग है, तो कहीं हरिहर कहते नाम, इस अलग अलग नाम तो विलक्षण है शालग्राम। तो शालग्राम में विष्णु बुद्धि करके उपासना करते है, तो प्रतीक उपासना वेद में आया मनो ब्रह्म इति उपासित, ये प्रतीक उपासना। जिस प्रकार शालग्राम में विष्णु बुद्धि, ओंकार में ब्रह्म बुद्धि, इसे मन में भी ब्रह्म बुद्धि, आकाश ब्रह्म इति आदेश, आकाश में ब्रह्म, नाम ब्रह्म इति उपासित, नाम वाचक शब्द में ब्रह्म बुद्धि कर, ये वेद में आया। और केन उपनिषद में देवताओं का जो विवाद हुआ, तो देवताओं का नहीं अभिवाद नहीं, देवता विवाद के बाद जीत लेने के बाद अभिमान हो गया, ये हमारा विजय हम जीत गए, तो उनके अभिमान खंडन करने के लिए परमात्मा प्रकट हो गया स्तंभ रूप से। तो देवता लोगों ने कहा ये कौन है, इनको जानना चाहिए। तो फिर अग्नि इंद्र आदि गए, अग्नि वायु गए, फिर इंद्र गए, केन उपनिषद आया। अग्नि गए तो पूछा तुम्हारा क्या सामर्थ्य, क्या चाहो तो मैं सबको जला दूंगा। और रखा तीन का ऐसे जलाओ, बड़ा जोर से जला नहीं पाया। वायु भी कहा उड़ा लूंगा, इसको उड़ा लो, उड़ा नहीं पाया। फिर इंद्र गया तो छिप गए। तो वो जो प्रकट हुआ था परमात्मा, इस रूप से प्रकट हुई, यही प्रतीक हुआ। वही ब्रह्मा विष्णु में विवाद के समय शिव प्रकट हो गए थे ज्योतिरूप से, वही ज्योतिरूप विभिन्न ज्योतिर्लिंग से पूजा होती। तो ये निर्गुण निराकार ब्रह्म चक्षुर गोचर होकर प्रकट होते हैं, ये वेद प्रमाण। वही चिन्ह है, वही लिंग है, वही स्तंभ रूप से उपासना करते हैं, वही ज्योतिरूप से हम ज्योति में ब्रह्म बुद्धि करते हैं, वही ज्योतिर्लिंग हो गया। तो प्रतीक उपासना भी वेद में, वो हम जो मूर्ति उपासना करते वो भी प्रतीक उपासना, उसमें एक रख करके हम परमात्मा बुद्धि करके उपासना करते हैं। और बाकी कहीं शिव दृष्टि करना, कहीं विष्णु दृष्टि करना, उसमें सब विभिन्न शास्त्र प्रमाण है। तो वेद में नहीं, ये बात नहीं, सब है। इसी प्रकार ये जो मंत्र में अनर्थक शब्द है, वो एक शब्द में परमात्मा बुद्धि करना, जैसे ओंकार में ब्रह्म बुद्धि करना, ऐसे हाउ ऐसे देख करके फिर मन एकाग्र करे, उसमें देवता कभी प्रजापति बुद्धि किसमें, जिसमें जैसे कहा गया आदित्य बुद्धि, परमात्मा आदित्य स्वरूप, ऐसे करके चिंतन करने पर ये प्रतीक उपासना। अन्य बाह्य अन्य प्रतीक की अपेक्षा ये प्रतीक श्रुति भीत प्रतीक उत्कृष्ट है। अन्यत्र ब्रह्म बुद्धि की अपेक्षा मन में ब्रह्म बुद्धि करना ये कठिन है। जो मन है उसे ब्रह्म, मनो ब्रह्म इतुपासिद्ध है वाक्य, मन में परमात्मा, ओंकार शब्द लिपि नहीं, ओम शब्द में परब्रह्म बुद्धि, ये प्रतीक उपासना। तो उसमें ज्यादा मन ला कर करना, अभ्यास करने पर कोई कर पाते हैं, और जो अभ्यास नहीं करके थोड़ा भी चिंतन करते व्यर्थ नहीं होता है। तो शालग्राम में विष्णु बुद्धि करके उपासना, मंदिर में बहुत कोई ध्यान करके उपासना पूजा करते हैं, कोई बहुत ध्यान उपासना करके थोड़े जाकर एक बार प्रणाम कर लिया, कुछ लाभ नहीं होगा, लाभ होगा होगा। ये मंदिर जाते समय कहीं देखकर जाकर प्रणाम कर लेते, दर्शन कर लेते, कभी कुछ पुष्प चढ़ा दिया, कहीं नहीं तो कर दिया, प्रणाम कर लिया, तो व्यर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार ये प्रतीक उपासना में थोड़े थोड़े चिंतन करते तो भी लाभ होता है, और यदि निष्काम और करते तो अंतकोण शुद्धि होती है। इसलिए ये सब उपासना दी गई वेदांत श्रवण ब्रह्म विद्या के पहले, ये थोड़ी उपासना करने से अंतकोण शुद्धि होती है। अंतकोण शुद्धि कोई बाहर से दिखती नहीं, होता है, लाभ होता है। जिस प्रकार बड़े को प्रणाम करते, सेवा करते तो अंतकोण शुद्धि होती है, परमात्मा की कृपा होती है। इसी प्रकार मंदिर में जाते, जप करते, पूजा करते, ध्यान करते, प्रणाम करते तो लाभ होता है, दिखता कहां। नहीं मानने वाले कहेगा मंदिर में जाने से क्या हो गया, तुमको क्या मिलता है, कहने वाले कहते क्या मिलता है, नहीं खंडन करते, किन्तु जो करते उनको लाभ पता चलता है, करने पर अभ्यास करते तो उनका मन में संतोष होता है, कुछ प्राप्त होता है, जानते। इसी प्रकार की उपासना भी करने पर लाभ होता है, व्यर्थ नहीं। एक बार भी मंदिर जाकर प्रणाम कर लिया, जितने तीर्थ स्थान है बहुत बार बार कौन जा पाता है, एक बार गए दर्शन किया, प्रणाम कराया, हाँ मैंने दर्शन किया, कहेंगे दर्शन करने तीर्थाटन जाते, बार बार कितने नहीं जा पाते, तुम एक बार किया तो भी उसका फल है। इसी प्रकार यहाँ जो उपासना है, चिंतन थोड़े समय कभी भी करे, अभी श्रवण करते समय भी थोड़ा चिंतन होता है, बाद में चिंतन करे, एक बार दो बार कभी कुछ चिंतन हो जाए तो भी उसका लाभ है। और जो कोई अभ्यास करके अधिक करे तो अधिक लाभ होगा। घर में सालग्राम रखे, एक बार प्रणाम कर लिया, ध्यान नहीं तो खाली रखने मात्र से परमात्मा क्या करेंगे, रख करके उसके चिंतन कितने करते हैं, फोटो मूर्ति बनाकर रखते हैं, बड़े सुंदर बना करके मूर्ति कीमत वाले भी रखते हैं, किन्तु उपासना कितने करते देखना पड़ता है। ये प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। द्वितीय अध्याय, पहले ओम इति तद अक्षर कह करके शाम के अवयव उपासना कहा गया, फल भी कहा गया, स्तोभ अक्षर उपासना कहा गया, और अभी है संपूर्ण शाम की उपासना। शाम के एक एक भाग, पांच भाग में एक भाग उद्गीत, उसका एक अवयव ओंकार, उसकी उपासना थी। अभी संपूर्ण शाम की उपासना, ओम समस्त खलु सामन उपासन साधु, यत खलु साधु तत् साम्यत्याशिक्षते, यद साधु तद सामेति, समस्तस्य साम्न उपासन खलु प्रसिद्ध है, संपूर्ण साम का उपासना। साम ऋचा में श्लोक में आरूढ़ कर गान किया जाता है, संपूर्ण साम का ध्यान उपासना साधु, साम की उपासना का साधु। यत खलु साधु तत्साम आचक्षते, जो साधु है शास्त्र विहित है उत्कृष्ट है वो उसको साम कहते हैं। साधु शब्द साम शब्द दोनों समान अर्थ को होता है। यत खलु साधु तत्साम आचक्षते, और जो असाधु है तद असामिति, जो साधु नहीं है शास्त्र विहित नहीं शोभन कर्म नहीं निंदित है उसको साम नहीं कहते। जो शोभन है निर्दुष्ट है प्रसिद्ध है उसको कहते साम, जो उसके विपरीत होगा उसको कहते असाधु असाम। संस्कृत में शब्द है साम मतलब अच्छा है और असाम मतलब असाधु ऐसे कहा जाता है। तदुता प्याहु सामने इनम उपगादिति, साधु नैनम उपगादित्येव तदाहु, रसाम नैनम उपगादित्य साधु नैनम उपगादित्येव तदाहु। साधु असाधु कैसे विचार करते हैं? कोई राजा के पास गया, राजा बुलाते हैं, राजा के पास गया, राजा के पास बुलाते कहते तो या तो चोर को बुलाएंगे अथवा किसको बुला कर कुछ पुरस्कार दिया। तो वे राजा के पास गया, सब लोग सोचते हैं राजा के पास गया क्या है, क्या कारण क्या है। कभी सोता है कोई बुलाए तो तुरंत डर जाते क्या कारण है। तो जब गया देखते हैं उसको कुछ दंड नहीं पुरस्कार लेकर आया तो क्या कहेंगे, सामना एनम उपगादिति, कहते शाम से गया राजा के पास, साधुना एनम उपगाद इतव तदाहु। सामना सामन शब्द का तृतीयांत सामना, शाम से ये राजा के पास गया था क्योंकि जा करके कोई दंड नहीं पुरस्कार लेकर आया तो साधु रोबन कर गया था। साधुना मतलब साधु मतलब साधु तपस्वी साधु नहीं, साधु का तो उत्कृष्ट रोबन करके विहित कर्म करके उचित कर्म से अनिंदित कर्म के द्वारा गया था पुरस्कृत हुआ। सामना में न उपगात कहते, यदि कोई पाप चोरी कर गया उसको दंड मिलता है, जेल में रखते पिटाई करते तो लोग क्या कहते, असाधुना एनम उपगादिते वो तताहु, असामना ये असाम से गया असाधु से गया निंदित कर्म कर गया था, उसके कार्य देख करके सब लोग कहते कई असामना एनम उपगात। असाम शब्द असाधु के लिए प्रयोग करते हैं, असाम शब्द साधु के लिए प्रयोग करते हैं। लोग देखकर कहते गया था राजा कुल में ये तो साधु अच्छे बनकर गया था पुरस्कार लेकर आया, कोई गया पिटाई खा कर आया था कहीं चोरी कर गया था ऐसे कहते। तो साधु के लिए साम शब्द और साधु के लिए असाम शब्द प्रयोग करते हैं। अथा तो प्याहु साम नो बतेती यद साधु भवती, साधु बतेत्येव तदाहु, रसाम नो बतेती यद असाधु भवत्य साधु बतेत्येव तदाहु। अथो उता प्याहु ऐसे कहते हैं साम नो बतेती, न का तस्माक हमारे साम मा अच्छा है, बत ये अनुकंपा कर कहते अच्छा हुआ, कोई कार्य होने के बाद कहे बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही कहा कार्यक्रम कार्य बहुत अच्छा हुआ, कितने खुश होते कोई कार्यक्रम अच्छा हुआ। वहां कैसे कहेंगे साम बत बहुत बढ़िया हुआ, साम बत संस्कृत में कहते साम संजातम बड़ा अच्छा हुआ। साम नो बत ऐसे जो कहते साधु भवती तो साधु बतेते वो तदाउ कहते अच्छा हुआ, साधु बत साधु हुआ बड़ा अच्छा हुआ। संस्कृत में से कहते साधु साधु मतलब अच्छा सुवर्णम ठीक है, जब कहते ठीक है बहुत बढ़िया से बहुत बढ़िया ठीक है इसके कहें साधु साधु तो यथार्थ हुआ उचित हुआ साधु सुष्टु साधु। असाम नो बतेती यद असाधु भवती, असाधु बतेते वाऊ अजय को ठीक नहीं हुआ अच्छा नहीं हुआ ऐसे कर दुखे थे ठीक नहीं हुआ बड़ा अच्छा हुआ, ग्लानी होती अच्छा नहीं हुआ ऐसे कभी कभी कोई व्यवहार में कुछ करते हैं त्रुटि हो जाती फिर ग्लानी करते ठीक नहीं ऐसे बोल दिया अच्छा नहीं हुआ। तो असाम बता यहां समस्त साम का उपासना साधु शब्द से कहते हैं और साधु शब्द साम के लिए साम शब्द साधु के लिए प्रयोग होता बताते हैं। इसी प्रकार साम में साधु बुद्धि करके उत्कृष्ट बुद्धि करके संपूर्ण साम की उपासना। स एतदेवं विद्वान साधु सामित्य उपास्ते अभ्यास हो यदेन साधव धर्म आच गच्छेय रूप चनमेयो हो। इसी प्रकार जो जान करके साम का चिंतन करता है, क्या भावना करके, साधु है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ बुद्धि करके साम का चिंतन करता है, अभ्यास मत शीघ्र ही इसको साधव धर्म, साधु धर्म, अच्छे धर्म उसके पास आ जाएंगे। अच्छे धर्म क्या है, जो श्रुति स्मृति के अविरुद्ध धर्म, वेद के द्वारा स्मृति के द्वारा विहित, जो निषिद्ध नहीं, ऐसे धर्म उसके सद्गुण उसके पास आ जाते हैं। किसके पास, उपासक के पास। साम साधु, ऐसे साम का चिंतन करे, साधु है, साम उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, ये साधु ऐसे भावना करते करते साम का चिंतन करे तो शास्त्र विहित जो सद्गुण उसके पास आ जाते हैं। और केवल आ जाते नहीं, उपचनमेयो हो, आ करके उसमें उपस्थित होते, उसके भोग्य बन करके उसका उपकार करते हैं। उपकार करते कौन, सद्गुण, सद्गुण आ जाना यही लाभ हुआ। साम की उपासना करने से क्या होगा, सद्गुण आ जाए, ये प्रथम खंड पूरा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकर निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईशो गुरुरात्मेति मूर्तिवेद विभागिनी ब्रह्मवज्रापदेहाय दक्षिणामोत्तरे नमः। ओम शांति शांति शांति।